हरे कृष्ण। सब एकत्रित भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज भगवान श्री राधा श्याम सुंदर की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हम यहाँ पर आए हैं। ये पवित्र स्थान का नाम श्रृंगार वट है, इसको नित्यानंद वट भी कहते हैं। ये पेड़ जिसके नीचे आप सब बैठे हैं और जिसका मूल भाग, जो छोटा सा अंश आपको दिख रहा है, उसको नित्यानंद वट कहते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी के अवतार हैं, उनका जन्म एकचक्र ग्राम में हुआ था और 12 साल की उम्र में एक सन्यासी उनको घर से लेकर गए थे तीर्थ यात्रा के लिए, और सारे तीर्थों में भ्रमण करते करते अंत में वो वृंदावन आए। वृंदावन में अनेक स्थान में भ्रमण करते करते वो यहाँ पर आए श्रृंगार वट में, और श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय नवद्वीप में थे। लेकिन अभी तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी संकीर्तन लीला शुरू नहीं की थी, और इसीलिए नित्यानंद प्रभु इस स्थान पर बैठकर इंतज़ार कर रहे थे कि मेरे स्वामी गौरंग, जो कृष्ण से अभिन्न हैं, वो कब लीला शुरू करेंगे। तो इसलिए इस स्थान का नाम नित्यानंद वट है। और यहाँ से जब उनको समाचार मिला कि गौरंग महाप्रभु ने अपनी लीला शुरू की है, संकीर्तन लीला, तो वो यहाँ से फिर नवद्वीप गए। नवद्वीप में जाकर नंदन आचार्य के घर में छिप गए, और जैसे आपको कहानी मालूम है, श्री चैतन्य महाप्रभु उनको खोज लेते हैं और फिर दोनों का मिलन होता है। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पर हम नित्यानंद प्रभु की कृपा मांगने के लिए आए हैं। भक्ति में सफलता के लिए कृपा बहुत आवश्यक है। बाकी जो योग, यौगिक विधियाँ हैं, जैसे ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, इसमें स्वयं के बलबूते पे सफलता मिल सकती है, अपने आप के प्रयास से। हठ योग में अपने आप के प्रयास से प्राणायाम करते हैं, नाक दबाना, हवा अंदर बाहर करना, थोड़ा ऊपर उठना, आसन करना। लेकिन भक्ति योग में सफलता सिर्फ गुरु और कृष्ण की कृपा से ही मिलती है। हेनो नीताय बिना भाई राधा कृष्ण पाईते नाई। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के राधा और कृष्ण का प्रेम नहीं मिल सकता। कुछ दिन पहले राधानाथ स्वामी महाराज प्रवचन में कितना सुंदर बता रहे थे कि कैसे हमको वृंदावन समझ में आएगा। हम तो आंखों से देख रहे हैं वृंदावन, लेकिन वृंदावन की वास्तविक महिमा तब पता चलेगी जब हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी, गुरु की कृपा मिलेगी। नहीं तो हम फिजिकली वृंदावन देखते हैं तो कोई चीज़ अच्छी लगती हैं, अच्छे अच्छे मकान, अच्छे पेड़ लगते हैं, लस्सी की दुकानें, और आपने रास्ते में एक से ज़्यादा नहीं लिया होगा शायद। ये तो हम भौतिक दृश्य देख रहे हैं, लेकिन रियल वृंदावन, सच्चा वृंदावन प्रकट होता है जब नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर नाम जप के विषय में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पास में और एक स्थान है इमली ताल, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु बैठकर जप करते थे। और सवेरे वो रात को रहने के लिए अक्रूर घाट में जाते थे और सवेरे यहाँ पर आकर दोपहर तक जप करते थे। तो नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही नाम जप में सफलता मिल सकती है। इसके पहले कि हम आगे जाएं, यहाँ जो आपने तस्वीर देखा होगा राधा रानी और कृष्ण का, इससे उसका नाम श्रृंगार वट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण ने राधा रानी का श्रृंगार किया था। जब रासलीला के बीच में भगवान श्री कृष्ण सब गोपियों को छोड़ करके, हरी, ये मॉडर्न मुरली है ये, मे बी नेक्स्ट लीला में कृष्ण भगवान मोबाइल ट्यून यूज करेंगे, पंचम स्वर, फिफ्थ नोट। तो श्री कृष्ण भगवान रास लीला को छोड़कर राधा रानी के साथ यहां पर आए। और गोपियां ढूंढ रहे थे कृष्ण कहाँ पर है, कृष्ण कहाँ पर है, और यहाँ पर उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने हाथों से राधा रानी के बालों को सजा रहे हैं फूलों से, इसलिए इसका नाम श्रृंगार वट हो जाता है। कल मैं यहाँ एक्चुअली जो इस ग्रुप इस जो आज आपने स्थान देखे मदन मोहन मंदिर, शायद दरवाजे बंद थे लेकिन भगवान ने देख लिया कि आप आए थे वहां पर। अल्टीमेटली भक्तिधाम ठाकुर बोलते हैं डू नॉट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान ने देख लिया कि आप आए थे और वही सफलता है। तो मदन मोहन, फिर श्याम सुंदर और दामोदर, ये जो कहानियां हैं मदन मोहन के, वो राधानाथ स्वामी महाराज ने पहले दिन प्रवचन में बताए आज से दो दिन पहले, इसीलिए मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ संक्षिप्त में। मदन मोहन का विग्रह सनातन गोस्वामी द्वारा स्थापित था, उसके बाद हम राधा श्याम सुंदर के दर्शन किए जो कि श्यामानंद के वर्शिपेबल लॉर्ड थे, पूजनीय देव थे। राधा दामोदर मंदिर सबने दर्शन किया, राधा दामोदर का, जहाँ पर शिला प्रभुपाद कई वर्षों तक रहे थे, शिला प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथ लिखे वहाँ पर, और वहाँ पर जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी की समाधि भी है। राधा दामोदर मंदिर इतना महत्वपूर्ण है कि शिला प्रभुपाद जी कहते हैं इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो आध्यात्मिक दुनिया का केंद्र है। तो राधा और कृष्ण की कृपा मिलना कलयुग में बहुत दुर्लभ है, क्योंकि कृष्ण भगवान हैं, करुणा सिंधु हैं। परसों लेक्चर में राधानाथ स्वामी महाराज ने करुणा सिंधु इसके ऊपर बहुत सुंदर बोला कि भगवान करुणा सिंधु हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दयालु हैं। वो एक ऐसे अध्यापक हैं, ऐसे टीचर हैं जो आपको थोड़े नंबर में भी पास कर देते हैं, करुणा सिंधु। जैसे परीक्षा में जनरली पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, 100 में से 35-35, लेकिन भगवान कृष्ण बहुत दयालु हैं, कोई बात नहीं आपने 20-25 प्राप्त किए, चलो चलो, यस ही इज़ वेरी मर्सीफुल, थोड़ी भक्ति, लेकिन फिर भी वो कुछ तो चाहते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, पहले आप मेरी शरण में आओ फिर आपको कृपा मिलेगी, कुछ तो आपको स्टेप लेना होगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण हैं, लेकिन वो इतने दयालु अध्यापक हैं कि विद्यार्थियों को बोलते हैं कि आप कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, खाली एग्जामिनेशन हॉल में अपना नाम लिखो, रोल नंबर और साइन करो, एग्जाम में पास। वेरी मर्सीफुल। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौर तुषे नमः। श्री चैतन्य महाप्रभु इज मोस्ट मैग्नानिमस, ब्रज प्रेम चैतन्य महाप्रभु मुफ्त में बांट रहे हैं, किसको, जगाई मधाई को भी। श्री कृष्ण भगवान जब धरती पर आते हैं तो अपनी लीला करते हैं और अपनी लीला से सब ब्रजवासियों के मन को आकर्षित करते हैं, असुरों को मार देते हैं, लेकिन नए भक्त नहीं बनाते, नया रिक्रूटमेंट नहीं होता, ओल्ड स्टाफ रहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु हैं, जो भक्त नहीं हैं उनको भी भक्ति में ले आते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा अगाध है, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा उससे भी ज्यादा है। नित्यानंद प्रभु इतने दयालु अध्यापक हैं कि जो विद्यार्थी कुछ नहीं लिखते, जो बोलते हैं कि मेरे को नाम लिखने की एग्जाम हॉल में जाने की इच्छा नहीं है, मैं बहुत आलसी हूं, तो नित्यानंद प्रभु उनके घर में जाके पूछते हैं तुमचा नाव काय आहे, हस्ताक्षर करा, पूर्ण 100 मार्क्स। इसीलिए हम नित्यानंद प्रभु के भक्त हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के। दो डिपार्टमेंट्स है, राधा कृष्ण और गौर निताई, और गौर निताई में भी नित्यानंद प्रभु और भी दयालु है। इसीलिए अभी शिवराम प्रभु जी गा रहे थे अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अकरोध, बलराम जी को गुस्सा आ जाता है। हम अभी यात्रा में एक स्थान पर जाएंगे राम घाट, जहां पर बलराम जी यमुना को बुलाते हैं इधर आओ, और इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, नशे में चूर होते हैं, उनके आंखें लाल होते हैं, और यमुना देवी सोचती है कि मुझे जाने की जरूरत नहीं, बलराम जी अपने हल लेकर खींच लेते हैं, उसके 100 शाखा कर देते हैं, और फिर यमुना देवी फूलों की माला लेकर प्रणाम करने आते हैं। लेकिन जब बलराम जी नित्यानंद के भाव में आते हैं तो अक्रोध बन जाते, बलराम के रूप में सकरोध, लक्ष्मण के रूप में भी सक्रोध, लेकिन नित्यानंद रूप के रूप में आते हैं तो अक्रोध। मार खाए प्रेम दे दयाल तो नहीं है, इतने दयालु कोई नहीं है। जगाई मधाई को कृष्ण प्रेम मिल गया, जगाई मधाई ने क्या किया था कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में? कोई रविवार प्रोग्राम में भी नहीं आए, प्रसाद के लिए भी नहीं आए, कोई सर्विंग नहीं किया, बैंड भी नहीं डाला था उन्होंने, उनको क्यों कृपा दिखाई? क्या क्वालिफिकेशन क्या था? कि सिर के ऊपर मटके से प्रहार किया, ये उनके क्वालिफिकेशन। सो मर्सीफुल। हेनो हेनो अवतार जारा रति न जन्मी लो, नित्यानंद प्रभु के प्रति रति ने होला उसका जीवन बेकार है। निताई गुण मनी आमार निताई गुण मनी, निताई नित्यानंद गुण सब गुणों के सागर है। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, नित्यानंद प्रभु के चरण छाया देने वाले। और आज हमारे इस्कॉन संस्था में शिल प्रभुपाद नित्यानंद प्रभु की कृपा को ऐसे वितरित कर रहे हैं कि जो कभी नहीं हुआ था कभी विश्व के इतिहास में। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ने एक जगाई मधाई का उद्धार किया, लेकिन उनकी कृपा कोई शिल प्रभुपाद जिसने हजारों जगाई मधाई, नासिक के जगाई मधाई, परभनी जगाई मधाई, बंबई के जगाई मधाई, ऑस्ट्रेलियन जगाई मधाई, जगायन मधायन मिसिस जगाई मधाई, द मर्सी इज अनलिमिटेड। ये है प्रभुपाद की कृपा। तो मैं थोड़ा इस बात पे चर्चा करना चाहता हूं कि कैसे हमें नाम जप करना चाहिए कृपा को प्राप्त करने के। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, दवाई दी है, एनेची औषधि माया नाशी बारो लागी हरि नाम महामंत्र लाओ तुम। आई हैव ब्रॉट द मेडिसिन। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं दवाई लेकर आया हूं, लेकिन वो दवाई को लेने का भी तरीका होता है। जैसे हमारे दीनानाथ प्रभु जी बहुत सीनियर वैष्णव हैं, वो डॉक्टर भी हैं, तो दवाई देते हैं। कई बार दवाई देने के लिए भी कोई एक असिस्टेंस की जरूरत होती है। तो जो वही दवाई जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु लेकर आए हैं, वही दवाई को शिल प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कैसे ग्रहण करना। इसलिए आज का जो प्रवचन होगा वो अधिकांश जो है नाम जप के विषय में होगा। जितने भक्त रुक सके उतना अच्छा है, क्योंकि इसलिए ऐसे 12:30 बजे इमलीताल के दर्शन के लिए यहाँ पे आरती होती है, तो जिन भक्तों को जाना हो जा सकते हैं, क्योंकि एक बार गए तो फिर प्रवचन नहीं हो सकता। लेकिन मेरी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त जिनको सुनने की इच्छा है वो रुक सकते हैं, और बाकी जिनको जाना है वो जा सकते हैं। कुछ भक्तों को शायद प्रसादम सर्विंग के लिए भी जाना होगा थोड़ी देर में, वॉलंटियर्स। लेकिन जिनको जो नहीं जा रहे और जो सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इसको बहुत एब्जॉर्ब करिए, प्लीज ट्राई टू एब्जॉर्ब। इसकी शुरुआत होती है चैतन्य चरितामृत से। चैतन्य चरितामृत में एक उल्लेख आता है कि चैतन्य महाप्रभु पहले तो कृष्ण भक्त नहीं थे, पहले बहुत अभिमानी थे। उनको भक्त बोलते थे, हे अभिमानी शिरोमणि, क्रेस्ट ज्यूल ऑफ एरोगेंस। और बाद में वही चैतन्य महाप्रभु त्रिनादपि सुनिच्छेन बताए, जब वो गया गए अपने गुरुदेव ईश्वरपुरी से मिले तो उनके अंदर प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। दीक्षा लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर दौड़ने लगे, वृंदावन वृंदावन, गोवर्धन गोवर्धन, मथुरा मथुरा, कृष्णा 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 कृष्णा, सर वो कृष्ण कृष्ण बोलकर दौड़ रहे थे। और उनको एक आकाश सुनाई वाणी सुनाई पड़ी, उनको देवताओं ने कहा, हे गौरमणि, आपका अवतार हुआ है सबको कृष्ण प्रेम बांटने के लिए, अभी आप मत जाओ। आप सबको कृष्ण प्रेम बांटने वाले हो, घर घर में हरि नाम बांटने वाले हो, उसके बाद आप वृंदावन जाना, अब आप नवदीप वापस आओ। हम तो आपके सेवक हैं, लेकिन आपको सुझाव दे रहे हैं। तो महाप्रभु वृंदावन नहीं गए, लेकिन जब वो घर में लौट कर आए तो वो कृष्ण के सिवाय कुछ जानते ही नहीं। वो पाठशाला में जाते, वो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर निमाई पंडित, अपने विद्यार्थी की उम्र में वो प्रोफेसर्स को पराजित करते थे। इमेजिन, कोई कॉलेज में स्टूडेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को पराजित कर रहे हैं, HOD को। तो इस तरह से निमाई पंडित जब लौट के आए तो इतने नम्र बन गए। अपनी क्लास ले रहे थे, विद्यार्थी ने पूछा, कोई ग्रामर का प्रश्न, धातु, महाप्रभु बोले सारे धातुओं का मूल है कृष्ण का नाम। उन्होंने पूछा वर्णाश्रम के बारे में, तो कहा कृष्ण ही सारे सारे वर्णाश्रम कृष्ण से ही आ रहे। तो जो भी कोई पूछता उसका जवाब था कृष्ण। अगर ऐसा हो तो जीवन बड़ा सफल हो जाए। नहीं, आप कहाँ जा रहे हो? कृष्ण। क्या टाइम होगा? प्रसाद कितने बजे है? जस्ट डिपेंड ऑन कृष्ण। हम अगर हम कृष्ण पर निर्भर हो जाए तो जीवन सफल है। तो महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त थे, और 6 घंटे ऐसे क्लास लेने के बाद फिर होश में आए, बोले आपको कैसा लगा मेरा क्लास आज? सब बोले आपने सिवाय कृष्ण के और कुछ बोला ही नहीं। महाप्रभु बोले मैंने कुछ बोला नहीं, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सारे विद्यार्थी बोले हम भी स्वीकार करते हैं कि सिवाय कृष्ण के और कुछ है ही नहीं। फिर सब विद्यार्थी बोले अगर ब्रह्मा जी भी अभी आएंगे हम उनकी क्लास नहीं अटेंड करेंगे। हम निमाई पंडित के स्टूडेंट हैं, सब ने किताबें बंद किए और वो गाने लगे हरिहराय नम कृष्ण यादवाय नम हरि, हरिहराय नम कृष्ण यादवाय नम, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरिहराय नम कृष्ण यादवाय नम, हरिहराय नम कृष्ण यादवाय नम, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन अपने बहुत ही निकट पार्षदों को बुलाए, कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स जो उनके घनिष्ठ मित्र थे, और उनको ये उपदेश करने लगे। पूरे चैतन्य चरितामृत में एक ही ये अध्याय है जहाँ पर महाप्रभु नाम के बारे में बता रहे हैं कि नाम जप कैसे करना चाहिए। उसकी शुरुआत में वो कहते हैं, पहला श्लोक, हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। उन्होंने बताना शुरू किया कि इस घोर कलयुग में भगवान के प्राप्ति करने के लिए एक ही उपाय है, और वो है हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते है सर्व जगत निस्तार। महाप्रभु ये श्लोक में बता रहे हैं कि कलयुग में भगवान कृष्ण अपने नाम के रूप में आए हैं, और नाम है ते है सर्व जगत उद्धार, इसका मतलब नाम लेते ही पूरे जगत का उद्धार हो जाता। जब हम नाम जप करते हैं, आज मैं कुछ डिस्कशन करूंगा जिसे हम नाम जप को सुधार सकें। जब हम नाम जप करते हैं, पहली चीज ये जानना चाहिए कि जब मैं हरे कृष्णा बोल रहा हूं तो राधा रानी और गोपीनाथ मेरी जीभ पर नृत्य कर रहे हैं, राधा और श्याम सुंदर मेरे सामने प्रकट हैं। मान लो आप वृंदावन मंदिर में राधा श्याम सुंदर के दर्शन कर रहे हैं, यहां पर राधा कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं या गोपीनाथ का दर्शन कर रहे हैं, तो क्या यह संभावना है कि आप दर्शन करते करते आपको नींद आ जाए? अगर आपको पता है सामने भगवान है तो बहुत ध्यानपूर्वक रहो। आप में से कितने भक्त हैं जिनको जपा में कभी कभी नींद आती है? हरी बहुत आती है तो दोनों हाथ ऊपर करें। मुझे बहुत खुशी हुई जान के कि मैं अकेला नहीं हूं. मिजरी लव्स कंपनी. लेकिन ये बीमारी सबको है. मेरे को पर्सनली करीब 25 साल हो गए 16 माला जप करते हुए, लेकिन फिर भी नाम जप संघर्ष रहता है. लेकिन ये संघर्ष करते करते अंत में सफलता मिलेगी, हमें विश्वास होना चाहिए. एक बहुत सुंदर कहानी है कि कैसे हम नाम जप में सफलता मिलेगी, गरुड़ जी और एक चिड़िया की. आपने सुनी है ये कहानी? कितने भक्तों ने सुनी है कहानी गरुड़ जी और चिड़िया की? भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता जशी आए तशी, उसमें है ना ये फोटो. आपने कितने भक्तों ने देखा है फोटो? आपके घर में है भगवत गीता? उसको जशी आए तशी रखा है? हाँ. साल में एक बार गीता जयंती के उसको थोड़ा साफ कर देना, उसको फूल अर्पण कर देना. गीता को पढ़ना चाहिए. तो गीता में एक फोटो है प्रभुपाद के अनुवाद वाली गीता में कि एक व्यक्ति, सॉरी एक्चुअली फोटो है एक कि एक व्यक्ति डूब रहा है. देखा आपने? एक व्यक्ति डूब रहा है और वो ऐसे पुकार रहा है और भगवान स्वयं गरुड़ जी पर सवार होकर लेने आ रहे हैं. तो वो जो फोटो है वो जप के समय ध्यान करना चाहिए कि मैं वो व्यक्ति हूं जो संसार में डूब रहा हूं. ऐ नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषय में भवम बुधो कृपया तव पाद पंकज सित धूलि सदृशम विचिंत. आई एम ड्राउनिंग, मैं डूब रहा हूं भव सागर में, आप मुझे मदद करिए. अरे मान लो आप अभी कल या परसों किसी एक दिन हम लोग यमुना स्नान के लिए जाएंगे, है कि नहीं? समझो आप यमुना जी में स्नान करते करते डूबने लगे, नहीं? कार्तिक का महीना में प्रार्थना नहीं कर रहा ये. वृंदावन में शरीर छोड़ना भी अच्छा होता है लेकिन मैं प्लान नहीं कर रहा. लेकिन मान लो आप डूब रहे हो और हमारे जो क्राउड कंट्रोल सिक्योरिटी के लोग हैं, बोट दिखाई पड़ती है आपको, नौका दिखाई पड़ती है, तो आप कैसे पुकारोगे उनको अगर आप डूब रहे हो? आप भी बोल हरि बोल तुम येणार काय, हरि बोल जल्दी आओ, प्लीज हेल्प हेल्प हेल्प, मदद करा मला, मदद करो. तो पहली बात हमें समझना चाहिए कि मैं संसार सागर में डूब रहा हूं. जो गजेंद्र की कहानी है वो लाखों साल नहीं, आज है, मैं डूब रहा हूं. तो भाव होना चाहिए. और दूसरी बात ये पेशेंस रखना चाहिए. श्रील प्रभुपाद गीता में एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक चिड़िया, मराठी में चिड़िया को क्या बोलते हैं? चिमनी. वो वाला चिमनी नहीं है, दूसरा चिमनी. एक चिड़िया समुद्र के किनारे कुछ अंडे देती है और वो अंडे देकर जाती है और जोर से तूफान आ जाता है, समुद्र सारे अंडों को लेकर चला जाता है. और चिड़िया लौट कर आकर देखती है कि कहाँ मेरे अंडे. चिड़िया के लिए अंडे मतलब उसके स्वयं के बालक हैं. हर योनि में माता पिता को बच्चों से इतना स्नेह होता है, ढूंढ रहे होते और समुद्र से प्रार्थना करते हैं मेरे अंडों को लौटा दो, कृपया करके मुझे वापस दे दो मेरे संतान को. लेकिन समुद्र परवाह नहीं करते. तो चिड़िया इतनी डिटर्मिंड, इतनी दृढ़ निश्चयी होती है कि बोलती है ठीक है मैं समुद्र को खाली कर दूंगी, समुद्र का पूरा पानी निकाल लूंगी और अंत में तो अंडे मिल ही जाएंगे. अभी आप कल्पना करिए कि समुद्र में कितने लीटर पानी होगा. नहीं? कोई मैथमेटिक्स स्कॉलर है यहां पर या कोई सिविल इंजीनियर होगा उसको मालूम होगा, नहीं? कितना पानी होगा? जनरली हम टैंक देखते हैं तो 50,000 लीटर का होता है सिंटेक्स टैंक, है ना, 1,00,000 लीटर. समुद्र में कितना होगा पानी? 10 करोड़ लीटर, उससे भी ज़्यादा होगा. मान लो हम कैलकुलेशन के लिए बोलें 10 करोड़ लीटर पानी है और चिड़िया के चोंच में कितना पानी आएगा एक बार में? आधा लीटर आ जाएगा एक बार में? नहीं, एक ग्लास भी नहीं. तो कितना आएगा? 10 मिलीलीटर ज़्यादा से ज़्यादा. दीनानाथ प्रभु कितना टाइम उसको जाना पड़ेगा? 10 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर. 1,000, 1 लीटर लाने के लिए 100 चक्कर, तो 10 करोड़ लीटर लाने के लिए कितने चक्कर हो गए? 100 करोड़ बार. इम्पॉसिबल, असंभव है. लेकिन जब गरुड़ जी ने देखा कि चिड़िया परेशान है, गरुड़ जी आए और गरुड़ जी ने समुद्र को आज्ञा दी ये अंडे वापस दे दो और तुरंत वंडे वापस दे दें। ऐसे ही हमारी कृष्ण भक्ति, जो भी हमारा कृष्ण के प्रति आसक्ति है, कृपा करेंगे और माया देवी को आज्ञा देंगे इसको मुक्त कर देंगे। देवी ही एषा गुणमयी मम माया, मामे वय प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ते। मेरी माया शक्ति को पार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वो पार कर लेते। तो नाम जप की सफलता का सीक्रेट क्या है कि मेरे प्रयास से सफलता नहीं मिलने वाली। प्रयास करना चाहिए, लेकिन अंत में सफलता कैसे मिलेगी? कृष्ण की दया, हे कृष्ण करुणा सिंध। तो भगवान की दया से ही सफलता मिलनी है। एक नया भक्त सोचता है कि मैं टेक्निक करूंगा, ध्यान से सुनूंगा, इंद्र सफलता मिल जाएगी। वो करना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, हरि शब्द बोलना चाहिए, लेकिन सफलता उससे नहीं मिलने वाली। सफलता कैसे मिलेगी? शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि वृंदावन में कृष्ण से भी ज्यादा राधा रानी की कृपा मांगनी चाहिए। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि वृंदावन में रहने का मतलब है कि फिक्स शेल्टर ऑफ वृंदावनेश्वरी, श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेना, राधा रानी की कृपा मांगना। इसलिए हम हरे कृष्णा बोलते हैं, हम कृष्ण हरे नहीं बोलते, पहले हम राधा रानी की कृपा मांगते। अगर हम कृष्ण के पास ये प्रार्थना करेंगे कि मेरे पर दया करो, तो कृष्ण हमारा पास बैकग्राउंड देखेंगे कि ये भक्त, इसने बहुत सारे पाप किए हैं पूरे जन्म में, बड़े फाइल 10 GB होगा शायद, बड़ा कितने सारे पाप हैं, एक योग्य नहीं है। लेकिन जब राधा रानी से प्रार्थना करती हैं और राधा रानी कृष्ण को कहते हैं ये भक्त बहुत अच्छा है, ये मेरे से भी ज्यादा अच्छा है। कृष्ण जानते हैं कि आप बदमाश शिरोमणि हैं, लेकिन जब राधा रानी बोल रहे हैं तो कृष्ण मना नहीं कर सकते, कि कृष्ण उस भक्त को स्वीकार कर लेते। तो नाम जप का मतलब है कृपा के लिए पुकारना और उसके लिए नम्र होना जरूरी है। रोज नाम जप शुरू करने से पहले गुरुदेव से, प्रभुपाद से प्रार्थना करनी चाहिए। नाम जब मैकेनिकल नहीं, यंत्र की तरह, जैसे कोई क्लिकर में टिक 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 टिक, हम मैं भी क्लिकर रखता हूँ गिनने के लिए, लेकिन नाम जब में हृदय से प्रेम हो, हृदय से प्रार्थना हो। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं अवर चैंटिंग शुड नॉट बी लिप डीप बट हार्ट डीप। हमारा नाम जब खाली होठों से नहीं होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। हम कृष्ण को पुकार रहे, कृष्ण मेरे प्राण। कुछ साल पहले मैं यहाँ पे राधा गोकुलानंद मंदिर में जप कर रहा था। आप लोग गए थे परसों राधा गोकुलानंद मंदिर, जहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी की समाधि है, देखा, नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि है, और छोटा सा इलाका है वहाँ पे, पूरा जाले लगाए हुए हैं अभी, जिससे कि बंदर भक्त नहीं आ सके। तो उधर ऐसा हुआ कि एक दिन मैं जप कर रहा था और एक छोटा बछड़ा वहीं पर था जहाँ पर हम जप कर रहे थे, और अपनी माँ से बिछुड़ गया था। और ऐसा हुआ कि वो जाल जो नेट लगाया उसके दूसरी ओर उसकी माँ आ गई, जो गाय, और अपने माँ को देखकर वो जोर से पुकारने लगा। anyway, मैं फार्म पे नहीं रहा हूँ इसलिए मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत जोर से रोने लगे और उसकी माँ भी दौड़ते हुए आई, लेकिन दोनों ने देखा बीच में एक नेट है। फिर से रोने लगे दोनों, लेकिन नहीं मिल रहा बहुत देर तक। अंत में जब मंदिर का पुजारी को हमने बताया कि देखो ये बछड़ा रो रहा है, आपको माँ से मिलाओ, तो पुजारी उनको उनको उठा कर ले गया। और अपने माता के पास ले गया और दोनों बहुत खुश हो गए। तो मैं सोच रहा था ये चैंटिंग के समय क्यों भगवान ने वृंदावन में लीला दिखाई कि मेरे को भगवान सिखा रहे हैं कि मुझे भी नाम जप में ऐसे राधा रानी को पुकारना है। मैं भी राधा और कृष्ण से बिछुड़ गया हूं और माया का नेट है बीच में, जाली है माया, है ना। नेट आजकल लोग नेट में रहते, इंटरनेट है ना, ये इंटरनेट माया का स्वरूप है कलयुग में, है ना। और भी बहुत सारे नेट है माया के, धनम जनम नेट, ये सब। तो इससे मुक्त होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गुरुदेव जैसे वो पुजारी ने बछड़े को उठाकर गाय के पास लेकर आए, ऐसे गुरुदेव हमें कृष्ण और राधा रानी के करीब ले आते हैं अगर हम उनको अलाउ करते हैं। तो हमें नाम जप को प्रथम प्रायोरिटी देना चाहिए। जैसे हमें पता है आज जैसे ना ब्रेकफास्ट यहाँ पे कितना आजकल 6:30 बजे शुरू हो जाता है, 7 बजे है ना, 7:45 से लाइन लग जाती है, नहीं किसी को बोलना नहीं पड़ता प्रभु जी जाओ प्लीज करो ब्रेकफास्ट, हमको पता है लेट जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, है ना। यू नो, जैसे नाम जप में भी सवेरे के समय उत्सुकता होनी चाहिए, जैसे उठे पहले स्नान करने के बाद पहली चीज मुझे नाम जप करना। ऑफकोर्स भगवान के नाम जप करने में कोई नियम नहीं है, दोपहर को भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 16 माला सुबह करना चाहिए और फिर दिन भर जब भी समय मिले और कर सकते। कोई भी चीज आपको पढ़ाई करनी हो या कोई भी चीज अच्छे ध्यान से करने हो तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो बहुत लाभदायक होता है, सवेरे के समय। सवेरे के समय जनरली मोबाइल फोन और दूसरे डिस्टर्बेंस भी नहीं होते, नहीं तो आप जो 9 बजे जब शुरू करते हो और साथ में बिजनेस कॉल्स आते हैं, हरे कृष्णा हाँ मैं आ रहा हूँ, हरे राम वो खाली 5,000 का है, हरे कृष्णा कृष्णा कल दिया था ना आपको, सुना नहीं आपने, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक बार राधे श्याम प्रभु जी जो राधानाथ महाराज से प्रश्न पूछे कि मैं जब भी करता हूँ और जब करने के समय दूसरे विचार आते हैं सेवा के बारे में, भगवान के विचार, तो क्या वो अच्छा है। महाराज जी ने बताया कि जैसे हम भगवान के अर्च विग्रह की आरती करते हैं, है ना, सुबह संसार भगवान की सेवा का एक तरीका है, भगवान की आरती करना वो भी एक आइटम है, और दूसरा है भगवान का महाप्रसाद लड्डू खाना वो भी भक्ति का एक अंग है, 64 में से एक है, सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण। समझो आप सोचोगे कि मुझे टाइम बचाना है, दोनों साथ में करते हैं, हम आरती कर रहे हैं कि जय जय गौरा चंद आरती को शोभा, दिस इज रिकॉर्डेड लेक्चर, है ना, महाराज ने बताया उनका। तो वो भी अच्छा है, भगवान की सेवा के बारे में सोचना वो भी अच्छा है, लेकिन जप के समय जप। और मेरा तो रियलाइजेशन है अगर आपको जप करने में 1.5-2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, तो 15 मिनट एक्स्ट्रा रखो जप के लिए। ऐसा नहीं हो कि जल्दी जल्दी में हम जप कर रहे हैं, जैसे हम जप कर रहे हैं और 7:15 से पहले दर्शन आरती खुलनी है, समय हो गया। तभी हमें प्रसाद सर्विंग के लिए 100 वॉलंटियर्स की जरूरत है, ये भी आवश्यक सेवा है। तो प्रभु जी से ना खाली, प्रभु जी से, यस प्रभु जी से, जो प्रभु जी वॉलंटियर जाना चाहें वो 100 कितने 100, यस। तो कहने का तात्पर्य ये है, वहां पे कोई गिनेगा, यहां से जाएंगे जो सीधा प्रसाद सर्विंग के लिए जाना नहीं तो रास्ते में बहुत सारे डाइवर्शंस हैं तो भगवान के नाम में बता रहा था कि थोड़ा एक्स्ट्रा समय रखना चाहिए। इसे दर्शनार्थी से पहले जब पूरा करना है तो फिर हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अभी खाली 10 मिनट बचे और 2 माला है, हरे राम 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 हरे, जैसे जैसे कोई कार में गियर चेंज करता है, हरे कृष्ण तो इससे कोई ज़्यादा लाभ नहीं है। हमें नाम जप ऐसे करना चाहिए कि हम भगवान से मिल रहे हैं, जैसे आप किसी से मिलते हो और आप तुरंत मिलते प्रणाम करते मैं लौकर गए तो वो व्यक्ति को मजा नहीं आता, जब किसी से मिलते हो तो उदय से मिलना। From the heart, ट्राई टू मीट दैट पर्सन। और मैकेनिकल जप नहीं, मैकेनिकल मतलब मराठी में क्या बोलते, यांत्रिक, यांत्रिक जप नहीं, यांत्रिक मतलब हमने अक्षर बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, लेकिन हमने प्रार्थना नहीं की। एक भक्त ने राधानाथ महाराज से प्रश्न पूछा कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्पष्ट उच्चारण करना, चैंट क्लियरली, वो उच्चारण इंपॉर्टेंट है या सुनना इंपॉर्टेंट है या प्रार्थना करना इंपॉर्टेंट है, क्या बोलना महत्वपूर्ण है या सुनना या प्रार्थना करना? तो महाराज ने कहा आप जीभ से बोलो, कान से सुनो और हृदय से प्रार्थना करो। ऑल थ्री हैव टू बी डन, यू हैव टू डू फ्रॉम द हार्ट। इसलिए बीच बीच में रुक के, जैसे एक माला पूरी हो गई तो आप याद कर सकते हो, आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषम भवम बुधो कृपया तव पाद, फिर दूसरी माला होगी और थोड़ा सा प्रेयर, न धनम न जन्म न सुंदरी, या जो आपके ड्यूटीज अगर आपको याद आ रहे हैं राधा गोपीनाथ राधा रमन उनकी तरफ देख कर या मन में प्रार्थना करके, वी कैन प्रे कृष्ण प्लीज प्लीज हेल्प मी। क्योंकि ये जानना है कि अपने प्रयास से सफलता नहीं मिलेगी, जब कृष्ण प्रसन्न होंगे कृष्ण दया करके, कृष्ण बड़े दया। और एक सीक्रेट है जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक लेटर में लिखते हैं कि जब हम नाम जप करते हैं तो जैसे हम मोती पे अपनी उंगली रख रहे हैं तो हर एक मोती पे यह सोचना चाहिए कि मैं चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को छू रहा हूं, आई एम टचिंग द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड गौर चंद्र, गौर अंग महाप्रभु के चरण कमल को मैं स्पर्श कर। और मैंने कल ये लेक्चर में बताया यहाँ पर, और जो दूसरे डिवोटीज जो येलो बैंड वाले थे, कई भक्तों ने मुझे बताया कि उनको अच्छा लगा जब मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि हरि नाम जो है कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बांटने आए हैं। नाम जप में बहुत सारे अपराध होते हैं, अपराध से कैसे मुक्ति होगी? गौर निताई से प्रार्थना करने से। इसे जैसे हमारी माला पूरी होती है तो माला पूरी होने के बाद हम ये मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, पंच तत्व की कृपा से। वॉलंटियर्स थोड़े और भी जरूरत हैं तो थोड़े और भक्तों को निवेदन है, तो पंच तत्व की कृपा से हमें कृष्ण प्रेम मिलता है। जब नाम जब करते हैं इस तरह की प्रार्थना की भावना होनी चाहिए। और एक मेरा सुझाव है कि अगर नाम जप में आपको रुचि जागृत करनी है, जैसे अगर कोई शराबी बनना चाहता है कैसे बन सकते हैं, कैसे शराबी बनना चाहिए? मुझे मालूम है आपको अनुभव नहीं है, हाँ थोड़ा थोड़ा पीना है बस, अभी तक थोड़ा थोड़ा ही पीना है। और दूसरा है हाँ शराबी का संग, ये तो अनुभव से लग रहा है। का संग करना, शराबी के संग करने शराबी बन जाते हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु सबसे बड़े शराबी हैं, वो कृष्ण प्रेम के नशे में। तो जो गुरुदेव हैं, जो वैष्णव जो नाम जप हमेशा करते रहते हैं, उनके साथ बैठकर जप करना। आज मैंने ट्राई किया कि पहले मैं अकेले जप कर रहा था, फिर बाद में गिरिराज महाराज के साथ बैठ के जप किया मैंने कृष्ण बलराम मंदिर में, तो मैं उनके साथ बैठ के जप कर रहा था तो जप अच्छा हो रहा था। जब साथ बैठ के जप करते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति मदद करता है, हम सो रहे होते हैं तो कोई व्यक्ति जब इसे उठाता है तो पहला रिस्पांस होता है मी झोपत नव तो मैं सो नहीं रहा था, ये नेचुरल रिएक्शन आता है। तो भक्तों के संग की बहुत जरूरत है। इसे भरत महाराज को देखिए, भरत महाराज इतने बड़े भक्त थे कि जब वो जप करते थे उनके आंखों में प्रेम के आंसू आते थे। तो वो किससे आसक्त हो गए? प्रेम से। तो दियर, समय दियर, दियर। पूरा दिन दियर। मेरा लक्ष्य नहीं है। क्या कर रहे हो आप? हमने जप नहीं किया, मेरा लक्ष्य नहीं किया। और भी इसलिए लाभदायक है जो कविता जी के जपा मशीन है,
चौका भी बैठते हैं तो मशीन
काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान प्रकट हुए नाम के रूप में, और नाम हैते है सर्व जगत उद्धार, ये नाम से पूरे जगत का उद्धार हो जाता। फिर वो बताते हैं कि ये तीन बार क्यों बोला है, हरेर नाम एव केवलम, तीन बार क्यों बोला गया। हम तीन बार कोई चीज क्यों बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जोर देने के लिए बोलते हैं। पांच बजे लेक्चर है, पांच बजे है, फिर भी भक्त छह बजे आते हैं, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव है। तो तीन बार बोलने का मतलब एम्फसाइज करना। आप लोग क्या बोल सकते हैं, शॉर्टकट हो जाता है नहीं? लेकिन कलयुग में लोग इतने बुद्धिमान हैं कि तीन बार बोलना पड़ता है। तीन बार समझते नहीं, बच्चों को रेड एंड ब्लू नोटबुक में तीन तीन बार याद दिलाते हैं कोई। और दूसरी बात, ये क्यों ऐसा बोला गया है कि नास्तिये व तीन बार क्यों बोला गया है, केवल क्यों बोला गया, क्योंकि रूपा जी बोलते हैं ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा और योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं है। इसे हम भारत में बहुत फेमस स्वामी रामदेव महाराज ने प्राणायाम सिखाते, पॉपुलर हो जाते, हम उसके विरोधी नहीं हैं, कभी कभी भक्त भी उपयोग करते हैं, लेकिन आप कितना भी प्राणायाम करो, कितना भी नाक दबाओ, हाथ पैर हाथ ऊपर नीचे करो, कभी कभी लोग करते करते ऊपर भी उठ जाते हैं, भगवान नहीं मिलने वाले। एक बार प्रभुपाद वृंदावन में थे, यहीं पर इस्कॉन मंदिर में, और एक जादूगर आ गया। तो जादूगर बहुत सारे जादू दिखा रहा था, तो कोई चीज़ को लिखा से मुँह में डालता है, कान से निकालता है, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। जब भागवतम क्लास में नहीं आ रहे थे वो भी लोग आ गए देखने के लिए, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। फिर प्रभुपाद भी आ गए, और प्रभुपाद हंस रहे थे, थोड़ी देर हंसते रहे, फिर बहुत गंभीर हुए, बोले यू कैन मेक सो मेनी थिंग्स अपीयर डिसअपीयर, कैन यू मेक बर्थ एंड डेथ डिसअपीयर। आप तो बहुत सारी चीज़ों को प्रकट कर रहे, अप्रकट कर रहे, जन्म मृत्यु को अप्रकट कर सकते। तो हाथ जोड़ के बोला, नहीं स्वामी जी ये माजा साठी शक्य नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी बोले मैं ये कर सकता हूँ, इसीलिए मैं जन्म मृत्यु को बंद करने का तरीका दिखा सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे से बड़ा जादूगर हूँ। रियल जादू है हरि नाम, हरि नाम से लोगों का हृदय परिवर्तन करना। नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन में एक कथा आती है कि एक व्यक्ति थे जिसका नाम था चंद्र राय, बहुत पापी था, अपने स्वजनों से लड़ाई करता था, बहुत सारे मर्डर किए थे, बहुत सारे चोरी किए थे। जिसे उस दिन अपने चंडीदास का ड्रामा देखा उसी का अंश था, तो इतने पाप कर रहा था कि उसके शरीर में एक भूत आ गया। भूत काल्पनिक नहीं है, भूत होते हैं, जो हरी नाम लेते हैं उनके शरीर में नहीं, लेकिन बाकी लोग के शरीर में आ सकते हैं। और वो भूत बोलने लगा कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं चंद्र राय के शरीर में हूं, क्योंकि भूतों का भी प्रेफरेंस होता है, चॉइस होता है, कि वो मेरा इतना दुर्भाग्य है। और इतना पापी था, और अंत में उसके माता पिता एक वो क्या बोलते हैं, तांत्रिक होते हैं ना, मांत्रिक के पास ले गए, वो कई मंत्र बोलने लगे, लेकिन भूत हंसने लगा, हरी बोल मैं सोड़नार नहीं मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। हाँ एक ही तरीका है, नरोत्तम दास ठाकुर बहुत महान वैष्णव हैं, अगर नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं आते हैं और अपने चरण इसके सिर के ऊपर रखते हैं तो मैं इसको छोड़ दूं। नरोत्तम दास ठाकुर को बुलाया जाता है, नरोत्तम दास ठाकुर बहुत दयालु हैं, वो आ गए और उन्हें चंद्र राय के सिर के ऊपर अपने पैर रखे, उनको हरे कृष्ण मंत्र सुनाया, भूत पलाई ला, अरे भूत चला गया। ऐसे हम भी माया के भूत से ग्रस्त हैं, जीव जागो जीव जागो, गौरचंद्र बोले खोट निद्रा जाओ माया पिशाची रकोले। भक्तिनोद ठाकुर बोलते हैं कि माया की गोद में सो रहे हैं और कैसे 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 जागना है, हरि नाम के द्वारा। इन छे औषधि माया नाशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र। तो ये जो कर्म और योग और ज्ञान, इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति सिर्फ हरि नाम के द्वारा। श्रील प्रभुपाद आगे यहाँ पे परपोट में बताते हैं कि कुछ लोग हमारे से आर्ग्यूमेंट करने आते हैं, बोलते हैं स्वामी जी आप बोल रहे हो हरि नाम अच्छा तरीका है, ठीक है आप भी सही है, मैं बोलता हूँ ज्ञान ठीक है, और ये बोलता है कर्म ठीक है, वो भी ठीक है, यू आर गुड आई एम ऑल्सो गुड, मैं भी करेक्ट हूँ आप भी करेक्ट हूँ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम उनसे कहते हैं नहीं हम करेक्ट हैं आप गलत हो। वो बोल रहे हैं कि यू आर गुड वी आर गुड, प्रभुपाद सेज नो वी आर गुड यू आर नॉट गुड। अभी लगते हैं तो कोई नम्रता नहीं लगती, नहीं कोई आके बोले प्रभु जी आप अच्छे नहीं हो मैं अच्छा हूं। जनरली हम बोलेंगे नहीं प्रभु जी आप ज्यादा अच्छे हो मैं सबसे पतित हूं, एटलीस्ट प्रयास करेंगे बोलने का, यू नो नम्र बनने का। लेकिन यहां प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो लोग कर्म ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिना नाम के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन नाम के जप में उसकी महत्व को समझना चाहिए। शचिनंदन स्वामी महाराज एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक गुरु अपने शिष्य को बोलते हैं कि आप गाओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और शिष्य जप करने लगता है और वो कीर्तन करते हुए जा रहा होता है और देखता है कोई रिक्शा वाला भी हरे कृष्णा बोल रहा है, ये पान वाला भी हरे कृष्णा बोल रहा है, और ये सब हरि नाम बोल रहे हैं। तो गुरुजी के आके बोलते हैं, गुरुजी आपने मुझे बताया कि बहुत अच्छा मंत्र है बहुत अमूल्य मंत्र है, लेकिन रिक्शा वाला भी हरे नाम ले रहा है, बच्चे भी धोबी भी हरे नाम ले रहे हैं, क्या बड़ी बात है, हरे नाम तो कोई भी ले सकता है। तो गुरु महाराज ने उनको एक डायमंड हीरा, क्या हीरा, एक हीरा दिया, बोले आप ये हीरा ले जाओ और ये हीरा सबको दिखाओ और बोलो ये हीरा अगर आपको दे दिया तो आप कैसे उपयोग करो, ये हीरा आपको अगर मुफ्त में दे दिया जाए तो आप क्या उपयोग करो। तो हीरा लेकर धोबी के पास गए, बोले अरे धोबी सुनो ये हीरा मैं आपको दे रहा हूं, ये हीरा आपके लिए है, आप क्या उपयोग करोगे। बोला बहुत जरूरी था, किस लिए, कपड़े पीटने में काम नहीं आएगा, वो अच्छी तरह धुलाई करने में। तो फिर सोचे अरे ये तो ठीक नहीं है, रिक्शा वाले के पास गए, ये हीरा आपको मैं भेंट दे रहा हूं आप क्या करोगे। लेकिन हम इसको रिक्शा के व्हील बैलेंसिंग में उपयोग करें, व्हील कभी टूट जाते तो ठीक करने के लिए। फिर बच्चों के पास गए, बोले ये लो ये हीरा है, बोले बहुत अच्छे हम खेलेंगे इसके साथ। और अंत में वो एक ज्वेलर, एक सोना सोनार जिसको सोना हीरा मालूम है उसके पास गए और बोले कि आपको ये मैं हीरा दे रहा हूँ आप क्या करोगे। बोले ओ ये हीरा उसकी कीमत 10 लाख रुपए है, ये तो मुझे ये तो बहुत उपयोगी चीज है। फिर वो गुरु महाराज के पास फिर से लौट कर आए और उनसे बताया कि अब हमने जान लिया कि हालांकि वो एक ही चीज है उसका अलग अलग लोग अलग अलग उपयोग करते हैं। ऐसे ही सब लोग हरे कृष्णा बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हरि नाम का लाभ हो तो उसके महात्म्य के साथ जप करें। जैसे मैं कई बार एक कहानी बताता हूं कि मैं हैदराबाद में था 3-4 साल पहले और वहां पर मैं एक भक्त के घर प्रोग्राम कर रहा था। प्रोग्राम के बाद हम नीचे आए थे, थिंक यू आर ऑल्सो देयर, आनंद भगवान प्रभु भी मेरे साथ थे, हम गार्डन में बैठ के जप कर रहे थे और एक मुस्लिम व्यक्ति आए और हमारे पास आकर बोले स्वामी जी इधर मत बैठो। मैंने बोला क्या हुआ, ये भगवान का नाम ले रहे हैं आप भी बोलो हरे कृष्णा हरे राम। वो बोले नहीं हम हरे कृष्णा हरे राम नहीं बोलेंगे। बोले क्या कारण है, बोले क्योंकि हम मुस्लिम हैं। हमने बोला कोई बात नहीं भगवान तो एक ही है, आप अल्लाह का नाम लो या हरे कृष्णा बोलो कोई अंतर नहीं है। तो बोला हाँ मैं अल्लाह का नाम लूंगा लेकिन हरे कृष्णा हरे राम नहीं बोलूंगा। उसको बहुत समझाया और अंत में उसको बोला ठीक है कोई बात नहीं खुदा हाफिज। तो बहुत खुश होकर बोले, खुदा हाफिज बोलूंगा लेकिन हरे कृष्णा हरे राम नहीं बोलूंगा। तो इस तरह से इससे भी थोड़ा लाभ मिलता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो बता रहे हैं तरीका कि हमें नाम जप की गहराई में जाना, हमें कोशिश करना, जैसे हम इस कौन में साल हमारे बीतते जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारे जप की क्वांटिटी और क्वालिटी, मात्रा भी बढ़ानी चाहिए और उसका क्वालिटी गुण भी बढ़ाना चाहिए। जैसे प्रभुपाद एक बार दीक्षा दे रहे थे और एक भक्त से पूछा, क्या दीक्षा के नियम क्या है? उसने कहा, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना और 16 माला जप करना। प्रभुपाद जी बोले, मिनिमम नॉट मैक्सिमम, कमित कमी 16 माला तो करना ही चाहिए, लेकिन से एकादशी है तो ज्यादा जप कर सकते हैं। अब ये कार्तिक का महीना है, इस कार्तिक के महीने में आप जो भी साधना करते हो उसका फल हजार गुना मिलता है, और वो भी वृंदावन धाम में करो तो और हजार गुना ज्यादा। तो हमें सोचना चाहिए कि ये अच्छा बिजनेस है, नहीं? यानी आप जो एक भी माला यहां जप कर रहे हो और हजार माला के बराबर है परभणी में या नासिक में या पूना में कर रहे हैं, तो अगर आप समझो यहाँ पे 16 की जगह पर 4 एक्स्ट्रा कर रहे हो तो 4000 माला के बराबर है, और 4000 माला 14 दिन की है तो कितना माला हो गया? 56000 माला। और फिर जाने के बाद भी करना चाहिए, नहीं क्या बोलो अभी हो गया 56000, ट्राई टू चैंट मोर। कई भक्त ऐसा व्रत लेते हैं कार्तिक में, दिन में एक बार खाना, तपस्या करना, वो अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा व्रत है कि जप ज्यादा बढ़ाना। नहीं नाम समदान, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, नाम के समान कोई दान नहीं है, नाम के समान व्रत नहीं है, न तपस्या है न पूजा है, सबसे बड़ा व्रत सबसे बड़ा तपस्या है कृष्ण का नाम लेना। तो न केवल इस महीने में, जैसे एकादशी, प्रभुपाद से एक बार श्री लोकनाथ स्वामी महाराज ने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद क्या आपने बताया कि एकादशी के दिन 25 माला जप करना चाहिए, एक्स्ट्रा जप करना चाहिए? प्रभुपाद जी बोले, नहीं मैंने नहीं बोला ऐसा। तो किसी ने पूछा, फिर आपने क्या बताया? प्रभुपाद जी बोले, मैंने बताया कि एकादशी के दिन जप बंद नहीं करना चाहिए, बस गाते रहना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाराष्ट्र में आप में से अधिकांश जी महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में कई ऐसे भक्त हैं जो एकादशी के दिन पूरा दिन जप कीर्तन करते हैं। लेकिन एकादशी मतलब थोड़ी तपस्या करनी चाहिए, ये नहीं कि हम एकादशी से दिन पहले वाले दिन रात्रि को थोड़ा एक्स्ट्रा खाएं क्योंकि कल एकादशी है, फिर एकादशी का सुबह फ्रूट सैलड और थोड़ा सा साबूदाना वड़ा, और फिर दोपहर को 4-5 आइटम, और रात को फिर द्वादशी के दिन और एक फीस्ट, थोड़ा कम खाना। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हम तपस्या करें, सबसे बड़ी तपस्या है कि नाम जप, नाम को अपने जीवन का प्रमुख अंग बने। और चैतन्य महाप्रभु आगे बताते हैं कि कैसे नाम जप को हम बढ़ा सकते हैं। तो बता रहे हैं, तृण हैते नीच है सदा लबे नाम, अपने निरभिमानी अन्य दिबे मान। तो चैंट भगवान का नाम लेने के लिए व्यक्ति को अपने आप को घास के तिनके से भी ज्यादा तुच्छ मानना चाहिए और सबको आदर देते हुए आदर की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अभी देखिए, घास के तिनके पे कई लोग चलते हैं, नहीं? आप कभी सोचते हैं कि घास के तिनके के ऊपर मैं पैर रख रहा हूं? घास का तिनका कोई विरोध नहीं करता, कोई उस पर मल मूत्र भी कर देता है तो घास का तिनका सहन कर लेते। ऐसे भक्त को होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ दुर्व्यवहार भी करे तो सहन कर लेंगे, क्योंकि भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा से हो। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज कलकत्ता में लेक्चर दे रहे थे और वो बता रहे थे अपने प्रवचन में कि कैसे हम जान सकते हैं कि कौन भक्त भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है, हम कैसे जान सकते हैं कि कौन भक्त जो है वो भक्ति में ज़्यादा एडवांस्ड है। और महाराज जी ने बताया कि हाउ ईगर वन इज टू ऑफर रिस्पेक्ट्स टू अदर्स एंड एक्सपेक्ट नो रिस्पेक्ट इन रिटर्न, कि जो व्यक्ति दूसरों को मान देने के लिए बहुत उत्सुक है और स्वयं मान की इच्छा नहीं, हृदय से सोचना कि मैं दास 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 हूँ। कई बार हम किसी को पूछते हैं प्रभु जी मैं आपका सेवक हूँ, कोई सेवा है हम करते हैं। कई बार कोई व्यक्ति सेवा देता है तो हम बोलते हैं मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। प्रभु जी आपने बोला मैं सेवक हूँ, वो मेरी नम्रता है, उसका फायदा मत उठाइए। तो सेवक बनना ये नाम जप के लिए बहुत जरूरी है, वेरी हम्बल। उसके उदाहरण है सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी इतने नम्र थे, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को गले लगाने गए और सनातन गोस्वामी बोले मेरे को मत स्पर्श करो, मैं अपवित्र हूं। एक बार तो जगन्नाथपुरी में एक लीला हुई कि चैतन्य महाप्रभु बैठे थे और उन्हें गोविंद को बोला, गोविंद जाओ सनातन को बुला कर ले आओ। गोविंद गए सनातन को बुलाने के लिए और सनातन दौड़ते हुए जो समुद्र का किनारा है जगन्नाथपुरी में, समुद्र के किनारे बहुत, आपने देखा जून जुलाई के महीने में आषाढ़ी महीने में बहुत धूप होती है, चलना मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप समुद्र किनारे चल रहे हो तो डांस करना पड़ता है क्योंकि खड़ा पैर रख नहीं सकते, इतना तेजी से दौड़ना पड़ता है। और उसके पैरों में छाले पड़ गए और दौड़ते हुए आए। महाप्रभु ने पूछा सनातन कौन है पता आएगा कितना मार्ग में तुम्हें आ गया, कौन से रास्ते से आए? उसने बताया मैं समुद्र के किनारे से आया। महाप्रभु पूछे क्यों आप समुद्र किनारे से आए? जगन्नाथ के मुख्य द्वार सिंह द्वार से आना चाहिए था जहां पर ठंडा रास्ता है। सनातन गोस्वामी ने जवाब दिया सिंह द्वार के पास से अगर मैं आता तो कोई पुजारी मुझे देख लेता या स्पर्श कर लेता तो मैं अपवित्र हो जा, वो अपवित्र हो जाता। मैं इतना पापी हूं कि जो मेरे को देखता है वो पापी हो जाता है, इसीलिए मैं समुद्र के किनारे से नहीं आया। महाप्रभु इतने खुश हुए बोले सनातन यद्यपि तुम्ही हो जगत पावन, आप पूरे जगत को शुद्ध करने वाले, तुम्हारा देखे पवित्र है देव मुनि गण, देवता और ऋषि मुनि भी आपका संग करना चाहते हैं, तथापि वैष्णव स्वभाव मर्यादा रक्षण, आपने मर्यादा का पालन किया, इसलिए महाप्रभु बहुत खुश हो गए सनातन के व्यवहार से। तो भक्त को ये गुण के लिए प्रयास करना चाहिए। एक दास भगवान का नाम लेने के लिए एक भिखारी बनना सीखना चाहिए। जीवन का परम लक्ष्य है एक अच्छा भिखारी बनना। अब ये सुन के आपको आश्चर्य होगा कि हम बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं भिखारी बनने के लिए, मैंने डॉक्टर MBBS किया बेगर बनने के लिए। स्पिरिचुअल भिखारी, आध्यात्मिक भिखारी जो क्या मांग रहे कृष्ण प्रेम। अभी मैं आपको एक बांग्लादेश में राधानाथ स्वामी महाराज ने एक लेक्चर दिया था हरिदास ठाकुर के स्थान, आपने नाम सुना है बेनापोल। हरिदास ठाकुर की कहानी सुनी है, एक बार वेश्या आई थी उनकी परीक्षा लेने, उस जगह का नाम है बेनापोल। आप में से कितने बहुत गए हैं बेनापोल, गए हैं कभी? बहुत सुंदर स्थान है। कभी आपको मायापुर जाएंगे तो मायापुर से सिर्फ 3 घंटे का रास्ता है, वेरी ऑफकोर्स वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो बेनापोल में महाराज बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के जीव भक्ति में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसको नाम जप में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 99% जो प्रोग्रेस है वो नाम जप से होता है। तो महाराज जी बता रहे थे कि जब हम नाम जप करते हैं तो वी शुड बी बेगिंग फॉर द मर्सी, भीख मांगनी चाहिए। बंबई में या बड़े शहरों में कोई भिखारी होते हैं जो जब कोई कार चलाने वाला रुक जाता है ट्रैफिक लाइट पे तो उसके पास भीख मांगते हैं कि मुझे भिक्षा दो, वो बोलते हैं नहीं, तो फिर दूसरे साइड से आते हैं ओके थोड़ा सा दे देते हैं। जैसे हम भगवान के सामने बार बार गिड़गिड़ाना है, ऐसे नहीं कि हम बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हे भगवंता माये 16 माला मेरा पूरा हो गया है 7 बजे, हाँ दे देना कृपा ठीक है, पेमेंट ज्यादा आता है प्रोडक्ट पाइजे, हाँ मैं 20 किलो, हाँ और वो भी मैंने निर्जल किया तो मेरे को ज्यादा कृपा मिलनी चाहिए। नहीं, भगवान की कृपा है अहेतु की है। जैसे मैं भीख मांग रहा हूँ और ये भीख मांग रहे हैं, जो घर का मालिक है मुझे बोलते हैं चलो नहीं मिलेगा और इसको बोलते हैं लो पूरन पोली लो पनीर खाओ, अरे ये अन्याय क्यों हो रहा है, इसको ज्यादा दे दिया मेरे को कुछ नहीं दिया। ये भगवान की इच्छा, जो देने वाला है जैसा दे। हमें भगवान का नाम लेने के लिए अच्छा भिखारी बनना चाहिए। भिखारी मतलब नम्र, समझो कोई आपके घर में भिखारी आता है, बोलते हैं मेरे को भूख लगी है, बस मेरे को 4 रोटी पनीर सब्जी और स्वीट राइस और 2 पकौड़ा चाहिए बस। ऐसे तो भिखारी नहीं होता। भिखारी का मतलब जो भी मिल जाए, जो भी मेरे बर्तन में मिल जाए। एक्चुअली राधानाथ महाराज बता रहे थे, हे कृष्ण करुणा सिंधु, भगवान करुणा के सागर हैं, राधा रानी करुणा के सागर हैं, फिर क्यों ऐसे किसी एक भक्त को ज्यादा कृपा मिल रही है? तो कोई एक व्यक्ति होता है उसको ज्यादा कृपा मिल रही है, और दूसरा व्यक्ति है उसको कम कृपा मिल रही है। हमें समझे भगवान की इच्छा, लेकिन साथ साथ ये भी जानना चाहिए कि जितना हमारा बर्तन होगा उसके अनुसार कृपा मिलती है। जितना ये गुण होगा, त्रिनादपि सुनीचे न तरोरी व सहिष्णु न, उतना कृपा मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तुम्हें रोज सुबह उठ के प्रार्थना करनी चाहिए, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे त्रिनापे का अति ही ना, कि गुरुदेव मेरे ऊपर करुणा करो, मेरे को नम्र बनाओ, क्योंकि नम्र व्यक्ति को भगवान का नाम लेना आसान हो जाता है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे अभिमान को नष्ट कर दो, क्योंकि मेरे अंदर अभिमान जो है मुझे भगवान की कृपा प्राप्त करने से रोकता है। तो चैतन्य महाप्रभु फिर दूसरे श्लोक में बताते हैं कि भक्त को सहनशील होना चाहिए। तो पहला गुण बताते हैं नम्र होना, और दूसरा वो कह रहे हैं तरु सम सहिष्णुता वैष्णव कोरी बे भर्सना ताड़ने काके किचू न बोली बे। डिवोटी एंगेज, जो भक्त भगवान का नाम ले रहे उसको पेड़ के समान सहनशील बनना चाहिए। अगर डांटा भी जाए, समझा आपको कोई डांटता है आपकी गलती के कारण, तो बुरा नहीं मानना चाहिए, और कोई बिना कारण भी डांटे तो भी बुरा नहीं मानना चाहिए। ये बहुत मुश्किल है नहीं, हमें कोई गलती से डांटता है तो भी हमें क्रोध आ जाता है, लेकिन बिना कारण तो बहुत क्रोध आ जाता है। तो ये बहुत मुश्किल गुण है। मैं भी 25 साल से जप कर रहा हूं, रोज प्रार्थना कर रहा हूं कि भगवान ये गुण मेरे अंदर आए। कबे हबे बोलो से दीना मार अपराध घुचि शुद्ध नामे रुचि कृपा बल हबे हृदय संचार। कब मेरे अपराध दूर होंगे, कब शुद्ध नाम मेरे हृदय से आएगा? प्रभुपाद जी अपने भागवतम तात्पर्य में बोलते हैं, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन कैन बी जज्ड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। कैसे जान सकते हैं व्यक्ति कितने सहनशील है, कितने महान है, कि सहन करना। और हमें जानना चाहिए कि हमें सहनशीलता भक्तों के संग में ही सीखनी है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भक्त कुछ कह देता है, हमें बुरा लग जाता है, लेकिन हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं विरोध नहीं करूं उसका। मेटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, हम अच्छे से अच्छाई करते हैं, बुरे से बुराई। नहीं, आप मेरे लिए प्लेट बनाना प्रसाद का, मैं आपके लिए बनाऊंगा, और आप नहीं बनाओगे तो मैं नहीं बनाऊंगा, आप चुराओगे तो मैं डबल चुराऊंगा। लेकिन ईंट का जवाब पत्थर के साथ, लॉजिक है, लेकिन भक्ति वो लॉजिक से परे है। इसका उदाहरण है पेड़ का। कई बार कोई गांव में कोई व्यक्ति पेड़ को काटने आते हैं, बहुत मोटा पेड़ है, और वो थोड़ा सा काटते हैं उसको, थक जाते हैं, फिर वही पेड़ का फल खाते हैं, उसके नीचे सो जाते हैं रात को, और सुबह उठ के फिर काटते हैं और फिर फल खाते हैं। तो पेड़ बोलता नहीं, अरे मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा, आप मेरा विरोध कर रहे हैं। ऐसे हरिदास ठाकुर, ऐसे महान वैष्णव, जो हरिदास ठाकुर को मार रहे थे 22 मार्केट में, भगवान ने अपना चक्र भेजा सुदर्शन उन सब जल्लादों को मारने के लिए, और हरिदास ने रोक दिया। समझा आपको कोई बिना कारण शहर में कोई आपके चोरी कर रहा है, आपको मारने आ रहा है, पुलिस आ जाती है, तुम क्या करेंगे? बोलेंगे यही है व्यक्ति, पकड़ो, 6 महीने जेल में डाल दो उसको। लेकिन हरिदास इतने नम्र थे, वो बोले चक्र को वापस भेज दिए। जीसस क्राइस्ट भी एक उदाहरण है सहनशीलता का। जीसस क्राइस्ट को, उन्होंने भी वैष्णव धर्म का प्रचार किया उस समय के अनुसार, और उनको फांसी पे चढ़ाने का प्रयास किया गया, और वो प्रार्थना कर रहे थे भगवान उनको क्षमा कर दो। तो भक्तों के संग में जब हम रहेंगे ना, तो कोई ना कोई इस तरह की स्थिति जरूर आएगी। तो जब कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार हो, तो हमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए, हमें मन में भगवान से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो अगर कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा हो। एक्चुअली वो गलत नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति ने आपको थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ मारने की शक्ति किसने दी है? कृष्ण ने। तुम कृष्ण को कुछ बोल नहीं सकते, नहीं कृष्ण मुझे क्यों मारा आपने, सब कुछ कृष्ण से हो रहा है। तो जो व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है वो हमें त्रिनादपि सुनिचेन बनने में और मदद कर रहा है, वो हमको भगवत धाम जल्दी पहुंचा रहा है, हमें धन्यवाद देना चाहिए उसको। ऑफकोर्स हमें दूसरों को नम्र बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम बोले आओ मैं आपको त्रिनादपि सुनिचेन बना रहा हूँ, है ना। तो हमें अपने उदाहरण से सीखना चाहिए। और ये चीज है, ये इतना सरल है बोलने में, लेकिन ये सबसे मुश्किल चीज़ है। लेक्चर देना बहुत इजी है, कीर्तन गाना इजी है, प्रसाद बनाना इजी है, खाना तो बहुत इजी है, लेकिन नम्र बनना, सहनशील बनना। अभी अगला प्रश्न होता है, अमानीना मान देना, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानीना मान देना। कैसे हम रिस्पेक्ट दें? हम बहुत ही जो सन्यासी और गुरु होते हैं हम उनको बहुत आदर करते हैं नेचुरली, क्योंकि वो भक्ति में बहुत आगे बढ़े हैं। लेकिन एक नए भक्त है उसको हम कैसे आदर करें? एक चींटी को कैसे आदर करें? एक बंदर जो चश्मा चुरा रहा है उसका कैसे आदर करें? आपका चश्मा किसी का चुराया कि नहीं ये यात्रा में? अरे बहुत फॉर्चुनेट, सिर्फ एक ही व्यक्ति का गया। अरे तो हम कैसे सबका आदर कर सकते हैं? एक छोटा बच्चा है जो अभी अभी 8 माला जप कर रहा है, वो मेरे से उम्र में आधे से भी कम है, तो उसको मैं क्यों आदर दूं? वो बहुत चिल्लर है, इट्स वेरी नॉट इम्पॉर्टेंट। तो प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, कृष्ण अधिष्ठाने सर्वे जीवे जानी, ये जानते हुए कि सबके हृदय में कृष्ण। वो व्यक्ति आपसे जूनियर है लेकिन कृष्ण तो आपसे सीनियर है। तो जो भी मैं आदर दे रहा हूं वो आदर किसके प्रति होता है? वो कृष्ण के प्रति। तो हमेशा कृष्ण 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 को सबके हृदय में देखना, पेड़ में भी, पक्षी में भी, सबके हृदय में। एक घटना हुई थी राधानाथ स्वामी महाराज के जीवन में, वो अमेरिका में थे कुछ साल पहले, और वो कहीं कार से जा रहे थे और एक कोई बहुत ही छोटा सा प्राणी, उसका एक्सीडेंट हो गया कार से और उसकी मृत्यु होने वाली थी। तो महाराज जी कार से आगे चले गए क्योंकि कार तो रुकना मुश्किल होता है हाईवे के ऊपर, और फिर आगे जाके यू टर्न लेकर घुमाकर वापस आए और उस जानवर को थोड़ा जल देने लगे, उसके कान में हरे कृष्ण मंत्र सुनाने लगे। क्यों? क्योंकि महाराज ये देख रहे थे कि वह प्राणी के हृदय में भी भगवान है, वो भी भगवान का अंश है। बड़े से बड़े जो पापी भी हैं, जो क्रिमिनल भी हैं, जो दुष्ट भी हैं, उनके हृदय में भी कृष्ण भक्ति की एक चिंगारी है। सहनशीलता की एक और कहानी प्रभुपाद जी के जीवन में है। आप सब लोग जाग रहे हैं ना, नींद आ रही हो तो बोलो हरी हरी हरी। एनीवे मैं खाली 5-7 मिनट बाद आरती होगी, तो आरती में हम सब लोग खड़े होंगे 5 मिनट के लिए और फिर बाद में प्रवचन कंटिन्यू होगा। तो अभी खाली 5 मिनट और आप जागते रहिए फिर। तो प्रभुपाद की एक कहानी है जो यहाँ राधा दामोदर मंदिर, आप सब ने दर्शन किए राधा दामोदर मंदिर के, तो वहाँ पर साइड में प्रभुपाद जी के कमरे हैं। तो प्रभुपाद उस समय उनको प्रभुपाद नहीं कहते थे, उनको स्वामी जी कहते थे। तो प्रभुपाद जी एक दिन जप कर रहे थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, वो पूर्ण रूप से मग्न थे जप में। और एक भक्त जो है प्रभुपाद जी के लिए दूध लेकर आए और प्रभुपाद इतने मग्न थे कि प्रभुपाद जी को पता ही नहीं था। और फिर एक बिच्छू आया, धीरे धीरे पास में आ रहा था और भक्त सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, ये बिच्छू प्रभुपाद जी को काट, बिच्छू को मराठी में क्या बोलते हैं, बिच्छू काम तो एक ही है दोनों का, वेरी बिच्छू का काटना। मैं एक बार खीरचोर गोपीनाथ मंदिर में था भक्तों के साथ और मेरे को एक बिच्छू ने काटा था, बहुत दर्द होता। तो प्रभुपाद जब कर इनको पता नहीं था, अरे भक्त सोच रहे थे मैं प्रभुपाद जी को बताऊं कि नहीं बताऊं, और थोड़े समय बाद जब बिच्छू बहुत पास आए तो उन्होंने बोला स्वामी जी, तो प्रभुपाद जी आंखें खोली, कहा कि यहां पे बिच्छू है। प्रभुपाद ने देखा उसको और फिर उन्होंने बताया इसको हटा दूं मैं, प्रभुपाद को पूछा मैं हटा दूं, प्रभुपाद जी बोले नहीं इसको रहने दो क्योंकि ये भी एक भक्त है। तो प्रभुपाद का इतनी महान गुण था कि वो एक बिच्छू में भी एक भक्त देख रहे थे, एक कृष्ण की आत्मा देख रहे थे। हमारा उल्टा होता है, हम भक्तों में भी दोष देखते हैं। तो ये प्रभुपाद के और भी कई कहानियां हैं प्रभुपाद लीलामृत से, कैसे प्रभुपाद जी सहनशील थे। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए मिशन की स्थापना करने के लिए, तो शुरुआत में कोई नहीं था उनकी मदद करने के लिए। कोई व्यक्ति थे जो उनको आक्रमण करने आए जहां पे वो रह रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी सहनशील थे, प्रभुपाद जी सहनशील थे। तो चैतन्य महाप्रभु यहां पर ये गुण पे जोर दे रहे हैं कि भक्त को सहनशील होना चाहिए। ए मत वैष्णव करे किचू ना मागी ब, अयाचक वृत्ति शाक फल खाई ब। एक भक्त वो है जो कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, हाईएस्ट लेवल है। ये माधवेंद्रपुरी स्तर पर थे, हम नकल नहीं कर सकते, कुछ मांगना ही नहीं, बैठे रहो प्रसाद आ जाए तो मिल जाना, वो बहुत हाई लेवल भक्ति है। जैसे मैं कल बता रहा था कि एक है कि बिना भगवान को भोग लगाए कुछ खाना, वो तो अच्छा नहीं है। उससे अच्छा है कि जो आपको अच्छा लगे वो बनाओ और भगवान को खिलाओ अब प्रसाद। मेरे भगवान को इडली अच्छा लगता है क्योंकि मैं इडली, मेरे को अच्छा लगता है इसमें, तो ये नेक्स्ट। उससे भी अच्छा है जैसे अभी हम यात्रा में है, जो भी आश्रम में बना है मंदिर में वो खा लेना, अभी हमारे पास चॉइस नहीं है। जो भी मिल जाए, गोभी मिल जाए, आलू मिल जाए, पनीर मिल जाए, या कुछ भी नहीं मिले, जो भी मिल जाए। उससे भी अच्छा है भिक्षा मांगना, सन्यासी के लिए तो है मधुकरी करना। सनातन गोस्वामी वृंदावन मधुकरी करते थे, कल राधानाथ महाराज ने परसों कहानी बताई थी, आपको याद है, वो मधुकरी कर रहे थे और मथुरा में आए। और उससे भी अच्छा है माधवेंद्रपुरी की तरह अयाचक वृत्ति, यानी अजगर की तरह ऐसे लेट जाना ऐसे, और कुछ आ जाए तो खा लेना, और नहीं आए तो हरे कृष्ण। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभुपाद जी थोड़ी चैतन्य प्रभु बोलते हैं किचू ना मागी ब किम्ब शाक फल खाई ब, जो शाक फल मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, और सदा नाम लई बे यथार्थ संतोष, और नाम लेने में ही संतुष्ट रहना। और फिर अंत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये सब चार चीजों को कंबाइन करके, त्रिनादपि सुनी छेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तनीय सदा। हरे कृष्ण। तो अभी आरती होगी और 5 मिनट आरती होगी, क्योंकि इमलीताल यहाँ से करीब 10 मिनट का रास्ता है, तो हम आपको चॉइस देते हैं अगर आप, क्योंकि वहाँ पे दर्शन 1:45 तक हैं, लेकिन जो भक्त जाना चाहें दर्शन के लिए दर्शन के लिए जा सकते हैं, और जो रुकना चाहें वो आरती के बाद दर्शन के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। और वॉलंटियर्स
हरे कृष्ण। तो यहाँ पर पुजारी जी ने रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर मंदिर का थोड़ा मरम्मत का काम चल रहा है और विग्रह का भी नवकलेवरम का सेवा होगा, तो जिन भक्तों की इच्छा है सेवा करने की, आप भगवान की तरफ ऐसा फेंकना मत पैसा, ऐसा $1, $3 ऐसा फेंकना मत, जो देना चाहे आप भगवान के सामने रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी आरती होगी,
हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बताने के बाद नेक्स्ट लिखते हैं ऊर्ध्व बाहु करी, हाथ ऊपर करके बोलते हैं ये श्लोक को, वो बोलते हैं कि ये श्लोक की एक कंठी माला धारण करी, इसको गले में, जैसे हमने कंठी माला धारण की है तो हरि नाम के धागे पे 4 मणि रखना है, और वो 4 मणि क्या है, त्रिनाद अपि सुनी छेना तरोर अपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनी। अब प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि नाम जप करते समय अपराध से मुक्त रहना चाहिए, और नीचे का होठ, ऊपर का होठ और जीभ तीनों हिलने चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं वन शुड नॉट मेक अ हिसिंग साउंड, कई बार हम जप करते हैं हरे कृष्ण 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 राम 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 कृष्ण 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 राम राम। तो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर कि जप करते समय होठों का मूवमेंट होना चाहिए, ऊपर का होठ, नीचे का होठ और जीभ में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। चैंटिंग इज वेरी सिंपल बट वन मस्ट प्रैक्टिस इट सीरियसली, तो गंभीरता से इसका अभ्यास करना चाहिए। तो हम आरती के बाद कंटिन्यू करेंगे, सब लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए, अभी टाइम है आरती, शुरू करिए प्रभु जी। ऐसे रखिए भक्तों को भी देखने में थोड़ा गैप। तो हम डिस्कस कर रहे थे भगवान के नाम के बारे में कि भगवान का नाम लेने का सच्चा तरीका क्या है। पहला पॉइंट बताया गया कि तृणादपि सुनिचन की भावना से लेना है। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सुनना। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एज वी आर चैंटिंग शुड ट्राई टू हियर द साउंड वाइब्रेशन। सुनना महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जप कर रहे होते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, लेकिन हमारा मन कहीं और जा रहा होता है। जैसे हम जप शुरू करते हैं हरे कृष्ण तो मन ऊपर चला जाता है, मन घूमने लग जाता है दूसरे दूसरे विचारों में, और फिर बाद में जब माला पूरी होती है तो बड़े खुशी से नीचे आ जाता है। तो यह प्रश्न उठता है कि मन को कैसे वश में किया जाए। अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा था कि मेरे लिए मन को वश में करना ऐसा है जैसे कि वायु को वश में करना। तो भगवान ने क्या जवाब दिया उनको, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। अभ्यास करना। देखिए कभी कभी हमें लगने लगता है कि भगवान का नाम मैं कई समय से ले रहा हूं और मुझे सफलता नहीं मिल रही। अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, ये प्रयास करने में भी कुछ नहीं हो रहा है, क्या बात है। लेकिन प्रभुपाद जी जरा पीठ में बैठी ऐसे बैठे, भगवान की तरफ पीठ मत कर। प्रभुपाद जी बताते हैं थोड़ा ऐसे रहे, जो भक्त यहां बैठे हैं थोड़ा सा। प्रभुपाद जी बताते हैं कि डिवोटी शुड बी पेशेंट, पेशेंस यानी सब्रता बनाए रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक भक्त थे जिनका नाम था मुकुंद दत्त, और भगवान उनको कृपा नहीं दे रहे थे। उन्होंने निवेदन किया भगवान से, मुझे कभी कृपा मिलेगी, कभी कृपा मिलेगी, और महाप्रभु गुस्से से बोले 10,00,000 जन्म के बाद कृपा मिलेगी। क्या नाम था भक्त का, मुकुंद दत्त। तो चैतन्य महाप्रभु जब कहे कि 10,00,000 जन्म बाद, तो मुकुंद दत्त इतने खुश हो गए, नाचने लगे, सिर्फ 10,00,000 जन्म, हरि बोल, वो नाचने लगे। और महाप्रभु बोले तुरंत अभी आ जाओ, अभी कृपा मिलेगी। और बोले 10,00,000 जन्म बाद आपने बोला था। महाप्रभु बोले क्योंकि आपने मेरे शब्दों पे पूरा भरोसा किया, इसलिए आपके सारे अपराध क्षमा हो गए। तो पेशेंस, जब में सब्रता बनाए रखना। जैसे एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरते हैं, नहीं आपको बाल्य लीला याद होगी, नहीं कई बार हम चलते हैं गिर जाते हैं, कई बार फिर उठते हैं, या साइकिल चलाना सीखते हैं। जैसे भक्त में, भक्त को नाम जप में बार बार अभ्यास करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि मन को हमें रोज मारना चाहिए। कैसे मारना चाहिए, जूते से या झाड़ू से? सुबह जूते से और शाम को झाड़ू से, या सुबह झाड़ू से शाम को जूते से। इसका मतलब क्या है कि जूते से मारना मतलब उसको कंट्रोल, उसकी बात नहीं सुनना, मन कहीं भी जा रहा हो उसको खींच के धोनी में लगाना। जब हम भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं तो नाम रुचि जागृत होती है, अपने आप फिर मन करता है। जैसे किसी को आपको बोला जाए प्रभु जी आपको एक बहुत कठिन सेवा है, राधा दामोदर प्रभु आपके लिए बहुत सेवा, क्या है, आज प्रसाद में आपको 6 रसगुल्ले खाने। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, 6 क्या ज्यादा भी खा लूंगा। लेकिन जब व्यक्ति को जॉन्डिस, जॉन्डिस क्या बोलते हैं हिंदी, जब पीलिया हो जाती है तो उसको मीठी चीज खाने में आनंद नहीं आता है ना, फिर उसको बोलना पड़ता है, डॉक्टर बोलते हैं कोई मीठा खाओ, तो कभी कभी वो खाते समय उसको दुख होता है, अच्छा नहीं लगता। ऐसे भगवान का नाम है वो रसगुल्ले की तरह है। और गुरुजी बोल रहे हैं रोज 16 रसगुल्ले खाओ, और हम बोल रहे हैं 16 आठ का शला नहीं। जब प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया तो प्रभुपाद शुरुआत में भक्तों को बोले 64 माला जप करो, भक्त बोले नहीं नहीं 64 शक्य नहीं, बहुत मुश्किल है, हमारे बहुत सारे काम रहते हैं, हम पाश्चात्य देश से हैं, वेस्टर्न बैकग्राउंड से हैं। प्रभुपाद बोले ठीक है 32 करो, फिर भक्त बोले नहीं नहीं 32 भी संभव नहीं है, हमारे बहुत सारे जिम्मेदारी होते हैं, ऑल राइट 16 करो और उससे कम नहीं। प्रभुपाद ने 16 से कम नहीं, तो भक्त बार्गेनिंग करके 8 या 4 जैसे सब्जी का दाम कम करते हैं। हमारी प्रवृत्ति क्या है कि कम से कम में काम चला लेना। आप में से कितने भक्त हैं जो 16 माला करने के बाद भी बीड़ बैग में फिर से हाथ डालते हैं? हमें अधिकांश है वो 16 करने के बाद हम सोचते हैं चलो मैं मुक्त हो गया जब से, और वो माला को फिर लॉक कर देते हैं। तो वो कहने का तात्पर्य है कि भक्त को सोचना चाहिए कि मैं नाम जप इस तरीके से करूं कि मुझे और रुचि जागृत हो। और रुचि कैसे जागृत होगी? और करने से, रुचि नहीं होने पर भी करते रहना, और दूसरी बात वैष्णव की सेवा करना, वैष्णव सेवा, नाम रुचि और जीव दया, ये तीनों आपस में संबंधित है। भगवान के भक्तों की सेवा करने से नाम के प्रति आकर्षण बढ़ता है। देखिए महत सेवम द्वार आहुर विमुक्ते, महापुरुषों की सेवा करने से मुक्ति के दरवाजे खुल जाते हैं, और संसारी व्यक्ति का संग करने से नरक के दरवाजे। हम थोड़ी देर पहले जो राधा दामोदर मंदिर में गए थे उस विग्रह का निर्माण रूप गोस्वामी ने किया था, और निर्माण करने के बाद उन्होंने विग्रह जीव गोस्वामी को दिए। जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के भाई के पुत्र थे, भतीजे थे। तो एक बार क्या हुआ, रूप गोस्वामी वृंदावन में एक विद्वान आए थे रूप नारायण, वो बहुत बड़े पंडित थे, शास्त्रार्थ करते थे, और वो आए और उन्होंने चुनौती दी सबको कि जो भी है मेरे साथ शास्त्रार्थ करे, और अगर वो शास्त्रार्थ में मेरे से पराजित हो जाता है तो उसको साइन करना पड़ेगा कि मैं रूप नारायण से पराजित हो गया, साइंड सो एंड सो से। और उसका बड़ा सर्टिफिकेट था, वो पूरे भारत में घूम रहा था, सबको पराजित कर रहा था, इतना नम्र था वो कि सबको पराजित कर रहा था। अंत में वृंदावन में आया, अब वृंदावन में रूप सनातन गोस्वामी के पास आए, तो रूप सनातन गोस्वामी सोच रहे थे क्यों अपना समय वेस्ट करना इस पर, उससे अच्छा थोड़ा और जप कर लेंगे। रूप सनातन ने साइन कर लिया कि हम हार गए। और फिर वो जीव गोस्वामी के पास आए, बोले देखो तुम्हारे चाचा तुम्हारे गुरु ने साइन किया, तुम भी साइन कर लो। हाँ, तो मेरे गुरु का अपमान कर रहे हो, आओ मैं चुनौती देता हूं तुमको। और यमुना के किनारे 7 दिन तक शास्त्रार्थ हुआ, और रूप नारायण अपना सर्टिफिकेट लेकर भाग गए। फिर रूप गोस्वामी, हालांकि वो जानते थे जीव गोस्वामी ने इसलिए किया क्योंकि रूप गोस्वामी का मान बनाए रखना चाहते थे, लेकिन रूप गोस्वामी उनको बुलाया और कहा कि तुमने क्यों उसके साथ शास्त्रार्थ करके समय बेकार किया, तुम्हारे अंदर मिथ्या अहंकार है, वृंदावन में वही व्यक्ति रह सकता है जो बहुत नम्र है, इसीलिए आप निकल जाओ आउट ऑफ ब्रज, वृंदावन से बाहर, उनका बैंड ले लिया, निकल जाओ। और जीव गोस्वामी ये नहीं बोले रहे तुमच्या साठीच केलं मी, मैं आपके लिए लड़ाई किया और आप मेरे को बोल रहे हो। वो बोले यस मेरी गलती हो गई, वो इतने नम्र थे। नम्रता का मतलब है हमारा दोष नहीं भी हो और कोई दोष दे तो कहना ठीक है बस भगवान की कृपा है। ऑफकोर्स कभी कभी हमें डिफेंड करना पड़ता है क्योंकि प्रचार में अगर हमारा दोष नहीं हो और दोषी किया जाए तो प्रचार में बाधा आ सकती है। चले गए वृंदावन छोड़कर नंद घाट में एक गुफा में रहते, बहुत कमजोर हो गए। कोई ब्रजवासी कुछ आटा देते, वो आटा को पानी में मिक्स करके थोड़ा सा कुछ खा लेते। एक दिन सनातन गोस्वामी जो ब्रज में घूमते थे, जो मधुकरी करते थे, वो नंद घाट के पास गए और किसी व्यक्ति ने उनको बताया कि आपके यहाँ पर कोई एक बाबा जी यहाँ पर रह रहे हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं। तो सनातन ने देखा, अरे ये तो जीव गोस्वामी। उनको यह समाचार मिला तो रूप गोस्वामी के पास गए और रूप गोस्वामी से कहा कि चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसमें से एक चीज है जो आप भूल गए। रूप गोस्वामी ये नहीं बोले अरे तुम कौन होते मुझे सिखाने के लिए, बोले आप भूल गए, इसमें भूल गया, बताओ क्या चीज भूल गए। तो सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को बोला कि आप मुख्य सिद्धांत बताओ, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं बताओ। और रूप गोस्वामी बताने लगे नाम रुचि वैष्णव सेवा जीव दया। जीव दया, हाँ जीव दया के दो मीनिंग हो गए, जीव दया यानी जीवों पर दया करना, और जीव दया का दूसरा अर्थ है जीव जीव गोस्वामी पर दया करना। तो तुरंत रूप गोस्वामी ने बुला दिया उनको, वापस SMS भेज दिया कम बैक, तुरंत आ गए वापस। फिर और एक घटना हो गई, रूप गोस्वामी एक किताब लिख रहे थे जिसका नाम था भक्ति रसामृत सिंधु, और ये किताब उन्होंने वल्लभाचार्य को दी, बोले कि इसमें अगर कोई गलती हो थोड़ा सा सुधार करना, एडिटिंग करना। तो उन्होंने दे दी किताब को एडिटिंग करने के लिए, और वल्लभाचार्य बाद में जीव गोस्वामी को बोलने लगे कि आपके गुरुजी ने जो किताब लिखी है उसका मैं थोड़ा सा शोध कर रहा हूं, उसमें थोड़ी सी गलतियां हैं। हाँ मेरे गुरुजी के वाक्य में कोई गलती नहीं होती, आओ हम शास्त्रार्थ करते। और कुछ ही दिनों में वल्लभाचार्य ने पराजय स्वीकार की। वो रूप गोस्वामी के पास गए किताब लेके, बोले तुमची भक्ति रसामृत सिंधु तुम्हें ठेवा, आपके शिष्य जो हैं वो भी मेरे से आपसे वो भी मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है। फिर रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को बुलाया, क्यों तुमने उसे शास्त्रार्थ किया, गेट आउट, बाहर चले जाओ वृंदावन छोड़कर। और फिर वो कई महीने तक बाहर थे, और फिर रूप गोस्वामी ने बुलाया। तो मैं ये लीला किस लिए बता रहा हूं कि जीव गोस्वामी इतने बड़े विद्वान थे, उनके टक्कर का कोई विद्वान नहीं है। उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, षड संदर्भ और इतनी सारी टीकाएं लिखी हैं, हरिनाम व्याकरण लिखा है जो संस्कृत सिखाते हैं हरिनाम के द्वारा, लेकिन वो भी अपने गुरु के सामने बस तुच्छ थे। कल गिरिराज स्वामी महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर से मिले तो प्रभुपाद ने आर्ग्यूमेंट किया कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाए बाद में भक्ति की बात करेंगे, नहीं आदि पोटोबा मग विठोबा, है ना, पहले हमको कुछ स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनको पराजित कर दिया, और प्रभुपाद जी बोलते थे आई वॉज हैप्पी टू बी डिफीटेड, पराजित होने में मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ये एक वैष्णव का लक्षण है कि नम्र रहना, स्पेशली गुरु के सामने, और अल्टीमेटली सब वैष्णव के सामने। और एक महत्वपूर्ण चीज है जप करने के लिए, जप करने से पहले प्रार्थनाएं अर्पण करना। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि नाम जप के शुरुआत में और अंत में कुछ प्रार्थनाएं हैं, जब 16 माला पूरे हो जाते हैं तो श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद में कुछ प्रार्थनाएं दी हैं तात्पर्य में। किसी को चाहिए तो मैं बाद में बता दूंगा। महानिधि महाराज की किताब है, इसका नाम है आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण, जो हिंदी में भी है नाम जप करने की कला, तो उसमें वो प्रार्थनाएं दी हैं। जैसे नाम जप पूरा होते ही ऐसे नहीं कि 16 माला हो गए बस तुरंत उतारा और चलो भाग गए, नहीं रुकने होने के बाद भगवान को धन्यवाद देना, हे राधा श्याम सुंदर मैंने ये नाम जप करने का प्रयास किया है, इसमें बहुत सारी गलतियां भी हुई हैं, कृपया इसको स्वीकार करो, इस तरह से प्रणाम करते हुए धन्यवाद देते हुए फिर दूसरे कार्य में लगना। नाम जप शुरू करने से पहले आप गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभुपाद से प्रार्थना कर सकते, षड गोस्वामी श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे चाई गोसाई कोरी चरण वंदा जहां होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। जो 6 गोस्वामी है रूप सनातन रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट, इनको याद करते भक्ति में आने वाले सारी बाधाएं दूर हो जाती। जब शुरू करने से पहले हम इनको भी याद करते, गिरिराज गोवर्धन को भी याद करते, जो भी आपके डीटीज हैं राधा गोपीनाथ राधा कुंज बिहारी या राधा श्याम सुंदर उनसे प्रार्थना कर सकते, और सबसे इंपॉर्टेंट गौर निताई से प्रार्थना कर। मैंने शुरुआत में बताया था कि नाम जप करते समय हर एक मोती पर ऐसा सोचना कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को स्पर्श करूं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से नाम जप में सफलता की प्राप्ति होती। और एक भगवान के रूप हैं, भगवान के अवतार जो सारे बाधाओं को दूर करने वाले हैं, वो हैं नरसिंह देव। तो हमें नरसिंह भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? जब जल्दी पूरा हो जाए नहीं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे नाम जप में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी नाम जप में बाधाएं आ रहे हैं, वो दूर हो जाए, मैं स्पष्ट रूप से जप कर सकूं, उच्चारण करते हुए, सुनते हुए और प्रार्थना करते हुए। नरसिंहदेव भगवान भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और भक्ति में आने वाले सारे विघ्नों को नाश कर देते हैं। जो भवसागर को पार करना चाहते हैं, उनको भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं नाम जप ध्यान पूर्वक कर सकूं। श्री प्रभुपाद बतलाते हैं कि मेरे जो शिष्य हैं या मेरे जो फॉलोअर इसका में डिवोटीज हैं, उसमें से भी अधिकांश करीब 80% हैं जो शरीर छोड़ने के बाद स्वर्गलोक जाएंगे। गोलोक नहीं, स्वर्गलोक। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इच्छा है भोग करने की, और वहाँ पर अच्छा इंद्र तृप्ति करके फिर धरती पर आकर फिर भक्ति करके गोलोक जाएंगे। तभी आपके पास चॉइस है कि या तो आप इसी जन्म में शुद्ध हो जाएं और गोलोक जाएं, या फिर थोड़ा स्वर्गलोक का मजा लेके फिर वापस भक्ति करें। कितने लोग स्वर्गलोक जाना चाहते हैं? नहीं, धरती से अच्छा है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में रिक्शा जाम नहीं होता, ट्रैफिक जाम नहीं, कोई राशन कार्ड नहीं बनाना पड़ता, कोई राइट्स नहीं होते, और व्हीकल की जरूरत नहीं, प्लेन में जाते हैं, और प्लेन में आवाज़ भी नहीं होता, और कोई किराया भी नहीं लगता। नहीं, कितने लोग जाना चाहते हैं स्वर्ग लोक? नहीं, फिर आप कहाँ जाना चाहते हैं? धरती लोक, नरक लोक, नहीं, गोलोक। यस, ये बहुत स्पेशल गैदरिंग है, सारे हजार भक्त हैं, सब बोल रहे हैं गोलोक जाना है, वेरी गुड। लेकिन जैसे अगर किसी की इच्छा है कि मुझे प्लेन में जाना है, तो टिकट भी खर्च करना पड़ता है। कोई बोले मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं ट्रेन का पैसा दूंगा और प्लेन में जाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता। ऐसे हमें संघर्ष करना होगा, हर दिन हमें संघर्ष करना है। आप बोलोगे प्रभु जी एक साल हो गया, दो साल हो गया, कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा, ये क्या है, कोई गलत मंत्र तो नहीं है? लेकिन आप देखिए, इस दुनिया में अगर बच्चे को एक कोई डिग्री प्राप्त करनी है, बीए, एमए या बीटेक, एमटेक, तो कितने साल लगते हैं? नहीं, पहले तो प्री केजी, केजी है ना, बालवाड़ी, फिर 10 साल स्कूल, फिर जूनियर कॉलेज, फिर कॉलेज, और फिर भाग गया तो डिग्री मिलती है। तो भौतिक डिग्री के लिए जो अज्ञान का सागर है, उसके लिए 15 साल बेकार करने पड़ते हैं। तो हरि नाम में रुचि के लिए तो हमें कितना समय लग सकता है? हमें सब्रता बनाए रखनी चाहिए। कृष्ण है मेरे साथ, कृष्ण मेरी मदद करेंगे। कुछ कुछ टेक्निक्स है नाम जप अच्छा करने के लिए। पहले है सुबह उठ के जप करना और रात को थोड़ा कम प्रसाद लेना। यात्रा के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन क्योंकि अगर हम रात में थोड़ा कम खाते हैं तो सुबह नींद जल्दी उठ जाती है। अगर आप रात को सोने से पहले पकौड़ा और पनीर और 3 रसगुल्ले और समोसा खाते हैं, तो फिर सुबह भक्ति का समोसा बन जाता है। बेटर टू ईट लाइट। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आइडियली व्यक्ति को दिन में एक ही बार खाना चाहिए, और नहीं हो सके तो 2 बार, और हमारे लिए यात्रा में 3 बार, ठीक है ना? क्योंकि रघुनाथ दास 3 दिन में एक बार खाते थे, हम 1 दिन में 3 बार, तो हम वही परंपरा में है ना? लेकिन धीरे धीरे कोशिश करना चाहिए कि खाना और सोना कम करें, और जैसे टाइम मिले, जैसे आप सेवा कर रहे हैं, टेम्पल में सेवा है या यात्रा में सेवा है, कोई सेवा नहीं है, आप बैठे हैं, तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि ओ जब मेरे गुरु महाराज बोलेंगे एक्स्ट्रा जप करने तभी करूँगा, जैसे समय मिले नाम जप करना शुरू कर, क्योंकि नाम जप वो हमारे जीवन का सर्वस्व है। नाम जप ही हमारी भक्ति का प्रधान लक्षण। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 99% प्रगति, 99% प्रोग्रेस जो है वो नाम जप से ही प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप को जीवन का प्रमुख अंग बनाना चाहिए। दूसरा है कि बैठकर जप करना। समझे, आप घूमते हुए जप कर रहे हो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे कितना सुंदर लग रहा है, हरे राम 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 राम, और पक्षी की आवाज़ आ रही है हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, तो फिर ये हमारा मन उड़ता जाएगा। जैसे आप देखते हैं जो मंदिर में भी सीनियर भक्त होते हैं बैठ कर जप करते हैं, कि बैठ कर जप करने से मन को केंद्रित करना आसान रहता है। अगर आप जप कर रहे हैं घूमते घूमते तो फिर ऑफकोर्स अगर बहुत नींद आ रही है तो चल के करना अच्छा है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि बैठ कर जप, जप से पहले रात्रि में अच्छा विश्राम कर लें, 6 घंटे या 7 घंटे जो भी करना है वो रात को कर लें। ऐसे नहीं कि मैं 5 ही करूंगा और फिर जपा में पूरा कर लूंगा, रेस्ट करना है, फिर ट्राई टू कि अच्छा रेस्ट की भी जरूरत है। इसलिए बेस्ट है आयुर्वेद के अनुसार कि रात्रि को जल्दी सो जाना, 9 बजे, जब यात्रा में 9:30 बज जाते हैं तब ऐसे, और फिर सुबह 3:30 या 4 बजे उठ जाना, क्योंकि सवेरे के समय जो जप होता है उसका महत्व ज़्यादा होता है। और एक नाम जप के लिए एक विधान है कि जब हम नाम जप करते हैं अगर आपको बहुत नींद आ रही है तो आंख खोल के भगवान की कोई फोटो या मूर्ति या गुरु की फोटो या मूर्ति के सामने प्रार्थना करें। जैसे मेरे इष्टदेव राधा गोपीनाथ हैं, तो मुझे नींद आ रही है तो मैं राधा गोपीनाथ की तरफ देखकर प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप कृष्ण हो, आपने तृणावर्त, तृणावर्त याद है एक बड़ा असुर था जो किस रूप में आया था, बवंडर, एक हरिकेन तूफान के रूप में, तो मेरा मन भी बवंडर की तरह है, आप चाहो तो इसको वश में कर सकते हो, भगवान से प्रार्थना करना, गुरुदेव से प्रार्थना करना, पूरी परंपरा के सारे आचार्यों से प्रार्थना करना, षड गोस्वामी से प्रार्थना करना और नामाचार्य हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करना। ये महापुरुषों की प्रार्थना से नाम जप में लाभ हो सकता है। जितना हम दूसरों को नाम के बारे में बताते हैं उससे हमें भी नाम में रुचि जागृत होती है। महीने में 2 दिन जैसे एकादशी होते हैं तो एक्स्ट्रा जप करना, और महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार घर से दूर कहीं तीर्थ में जाना और पूरा दिन जप करना अगर हो सके तो, पूरा दिन नहीं तो 2-3 घंटे 4 घंटे, और बीच में प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना, ये भी बहुत लाभकारी है। जैसे एक अच्छा विद्यार्थी है वो प्रैक्टिस करता है ना, अभ्यास करता है जैसे फाइनल एग्जाम में पास हो जाए, ऐसे हमारा फाइनल एग्जाम अंतिम परीक्षा क्या है, मृत्यु, और हमारा अभ्यास है ये 16 माला जप करना। अब अंतिम परीक्षा की तारीख क्या है किसी को मालूम है, तो अनाउंस नहीं की जाती, और आप बोलोगे मैं एग्जाम बंक करूंगा, नहीं, आपको वहां ले जाएंगे किसी भी समय। तो प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे 2 चीजों को हमेशा याद रखना है, पहला है मृत्यु, डेथ, मृत्यु कभी भी आ सकती है, और दूसरा है हरि नाम, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं कहानी कहकर अंत करना चाहूंगा, सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। एक रिसेंट कहानी है अजामिल, मॉडर्न अजामिल, आपने सुनी है कहानी, आपने अजामिल की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन ये मॉडर्न अजामिल है। ये लंदन में एक भक्त हैं जो अभी भी लंदन में ही हैं, उनका नाम है मिस्टर प्रकाश, और वो भक्ति करते जब कर रहे थे 16 माला, लेकिन बहुत उतना ज्यादा ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे थे, और अचानक उनको हार्ट अटैक आया, हृदय का दौरा यानी हार्ट की प्रॉब्लम हुई, इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया, बहुत सीरियस, डॉक्टरों ने कहा कि सर्जरी करना पड़ेगा इनका, तो इनकी सर्जरी करने के लिए डॉक्टर्स थे और 4 डॉक्टर्स थे, उनके पत्नी बच्चे सब वहां पर एकत्रित थे, और जब ऑपरेशन का समय आया तो वो कोमा में चले गए, यानी बेहोश अवस्था में ऐसे चले गए जहां पर ऑपरेशन करना संभव नहीं था। डॉक्टर सब रुक गए, 1 घंटे बाद फिर होश में आए, फिर ऑपरेशन करने गए, फिर बेहोश हो गए, ऐसे 4 बार हो गया। 4 बार बेहोश होने के बाद फिर वो होश में आए और ऑपरेशन सफल हो गया, सब कुछ कुशल हो गया। उसके बाद वो अपने परिवार वालों को बताने लगे, डॉक्टरों को बुलाया और बोले 4 बार वो आए थे, 4 बार। उसका डॉक्टर बोले हाँ हम आए थे 4 बार ऑपरेशन करने, बोले नहीं आप नहीं, उनके पत्नी बच्चे बोले हम आए थे, बोले आप भी नहीं, कौन, चार बार वो काले कलूटे लोग आए थे, बड़े भयानक आंख वाले। कौन है वो? अच्छा, दोस्ती है उनके साथ। पूर्वजनों में कई बार अपॉइंटमेंट रहा उनसे। नवी स्टॉन में आ गए तो यमदूत के साथ कई बार। पहली बार वो आए मुझे लेने के लिए, मैंने बोला मैं कृष्ण का दास हूँ, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उनसे आए और मैंने बोला कि मैं कृष्ण पर निर्भर हूँ, मुझे छोड़ दिया। अगर आप कृष्ण को याद कर रहे हो तो यमदूत भी कुछ नहीं कर सकते। अगर निश्चित प्रकाश उनके परिवार के सब लोग फुल पंक्तिस्पन गंतव्य की सेवा में लगते, क्या बोलोगे? प्रभु जी मेरे को भी अनुभव होगा, बाद में मैं करूँगा। और यमदूत सत्य होते हैं, ऐसा नहीं कि यमदूत पहले होते थे अभी नहीं है। नहीं, आजकल तो बहुत बिजनेस है, बड़े शहरों में बहुत होते हैं। अभी गोवा में एक हमारे एक भक्त हैं, वो मुझे बता रहे थे उनके घर के सामने उनको दिखाई पड़े ऐसे यमदूत आ रहे थे। क्या उनका वाहन क्या होता है? भैंस, भैंस होता है उस। और उन्हें नर्सिंग का प्रेयर बोला और वो चले गए। तो भगवान के नाम से सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवल कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर्नित। भगवान के नाम के अलावा और कोई गति नहीं है, नाम पे ही पूरा भरोसा होना चाहिए। अगर हम नाम जब अच्छे तरीके से करते हैं अभी, तो अंत समय भी कृष्ण याद आएंगे, और नहीं तो पुनर्जन्म होगा। से मान लो अंत समय आपको मोबाइल याद आ जाता है, तो अगला जन्म का मोबाइल की दुकान में हो सकता है, ये ना आपको नोकिया नोक्रिया, बस भक्ति नहीं होगी सिर्फ नोकिया। ऐसे उदाहरण है, अभी रिसेंटली एक डिवोटी हैं, एक माता जी हैं भक्ति चारू मार के डिसाइपल, उनका नाम है रत्नावली माता जी। मैं गुरु महाराज ने पूछा कि पूर्व जन्म में आप शरीर छोड़ते समय क्या सोच रहे थे, क्या मृत्यु के समय किसको याद कर रहे? तो उन्होंने बताया, उनको विश्वास नहीं हो, अभी आपके गुरु महाराज पूछे पूर्व जन्म में आप क्या याद करें तो बड़ा आश्चर्य लगेगा। तो उन्होंने रिसर्च किया और पता लगाया कि पूर्व जन्म में लंदन में, अभी भी लंदन में है, और पूर्व जन्म में लंदन में वो एक ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था राघव पंडित, और प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दी 1973 में लंदन में रथ यात्रा के बाद, और अगले दिन एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि मृत्यु के समय वो एक माता जी के बारे में सोच रहे थे जो मंदिर में रहते थे, उनका अगला जन्म वो स्त्री के रूप में हुआ, और वो माता जी जिसको याद कर रहे थे गुजराती परिवार से थे, तो इनका जन्म भी गुजराती परिवार में हुआ। फिर उन्हें पता लगाया माता जी कौन है, और फिर उनसे मिलने के लिए गए, और दोनों जब एक दूसरे को देख रहे थे ऐसा लग रहा था कि बीच में एक मिरर आईना रखा है, सेम आंख सेम कान सेम नाक सिमिलर, खाली 20 साल उम्र का अंतर। तो कहने का मतलब यह है कि अंत समय पता नहीं क्या विचार आएगा, हो सकता है आपको कोई यू नो रास्ते का कुत्ता याद आ जाए, हो सकता है कि रसगुल्ला याद आ जाए, हो सकता है कि आपको क्या अच्छा लगता है आपको पूरनपोली याद आ जाए, बेस्ट है आपको राधा गोपीनाथ राधा श्याम सुंदर याद है। और वो कैसे होगा कि अगर आप अंत समय गाओगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो समय होने वाले 2 मिनट बचे, कोई प्रश्न है किसी को? मे बी प्रसाद के बाद जो भक्तों को सेवा नहीं है तो प्रसाद के लिए जाएंगे 2 से 3 बजे, तो फिर 3 बजे के बाद अगर कोई भक्त कोई प्रश्न है तो प्रसाद हॉल में ही मैं थोड़ी देर के लिए और डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी समय हो रहा है। यस प्रभु, नाम जप के ऊपर एक क्लास। प्रभु जी बोल रहे हैं अभी याद रहेगा लेकिन 2-3 दिन बाद फिर भूल जाएंगे, फिर बार बार याद करना चाहिए, पुस्तक में दिया पढ़ना चाहिए, अभ्यास करना। जैसे आप प्रसाद खाते हैं, आज खा लिया डाइजेस्ट हो गया, फिर कल फिर से खाओगे कि नहीं, ऐसे बार बार सुनना चाहिए। तो 2 मिनट सब लोग आंख बंद करके नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करें कि हमको हरि नाम में रुचि मिले और हम उनके निर्देश